ओम शांति। बंबई के एक प्रसिद्ध व्यापारी को अमेरिका जाना था। उसी दिन उन्होंने नए शूज खरीदे और जब तक न्यूयॉर्क पहुंचे तो 24 घंटे हो गए थे। जब उन्होंने शूज उतारे तो देखा कि पैरों में पस हो गया था। काफी समय तक इलाज करना पड़ा, तब ही वह पैर ठीक हो सका। भल पैर काटना तो नहीं पड़ा, परंतु उन्हें बहुत ही तकलीफें सहन करनी पड़ी। अपने उद्गारों में उन्होंने यही कहा कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया था कि डायबिटीज के मरीज को शूज खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आज यह सब कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। एक गृहिणी की जो सिलाई का काम कर रही थी, बिल्कुल देख सकती थी, परंतु अचानक ही 4-5 मिनटों में एक आंख से दिखना बंद हो गया। उन्होंने भी यही कहा कि मुझे आज तक ये पता ही नहीं था कि डायबिटीज के मरीज को आंखों की संभाल कैसे करनी चाहिए, कब कब आंखों की चेकिंग करनी चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी समस्या मेरे सामने नहीं आती। एक इंजीनियर थे, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। तब भी उन्होंने इसी भाव में दर्द भरे स्वर में यह बात कही कि मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई थी कि डायबिटीज की किडनी पर कितनी घातक असर होती है और क्या क्या जांच करनी चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। ऐसे ही एक प्रोफेसर लेक्चर ले रहे थे, लेक्चर लेते लेते ही गिरने से बेहोश हो गए। काफी समय तक डॉक्टरों ने कोशिश की, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि इनको डायबिटीज है और उनका देहांत हो गया। अगर दूसरे प्रोफेसर्स को यह पता होता कि इन्हें डायबिटीज है तो तुरंत ही अस्पताल में इलाज हो सकता और उनकी जान बच जाती। इन चारों किस्सों में हम यह देखते हैं कि डायबिटीज के विषय में सही जानकारी न होने के कारण उनके सामने इतनी बड़ी समस्या आई। इन लेक्चर्स में हम कुछ उद्देश्य को लेकर के यह लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि डायबिटीज के बारे में आम जनता को पूरी जानकारी देना, क्योंकि जब मरीज भी डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता है कि 5-6 घंटे निकाल करके सारी जानकारी मरीज को दे। इसलिए इन प्रवचनों के द्वारा डायबिटीज के बारे में जब आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी तो उसे नियंत्रण में रखना सहज हो सकता है। आज हम जानते ही हैं कि भल डायबिटीज को हम क्योर नहीं कर सकते हैं, पर उसे नियंत्रण में जरूर रख सकते हैं। और अगर आप नियंत्रण में रख पाए तो भी एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति जितना अच्छा जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। दूसरा उद्देश्य इस प्रवचन का है कि जीवन पद्धति जो बहुत ही आवश्यक है, जब तक हम अपनी जीवन प्रणाली में परिवर्तन नहीं लाते डायबिटीज पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। भारत के एक राज्य के गवर्नर थे, उनको भी डायबिटीज था। बहुत बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट उनके साथ होते थे, परंतु फिर भी जब डॉक्टर्स उन्हें कुछ राय देते थे कि साहब आप नियमित एक्सरसाइज करो, आहार में यह बातें नहीं खाओ, तो कहते थे तुम कुछ बोलो नहीं, तुम सिर्फ मुझे दवाई दो, इंसुलिन दो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो सचमुच देखा गया कि अंत समय में उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हुए और बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट भी उन्हें बचा नहीं पाए। तो इसलिए जीवन प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। और डायबिटीज को नियंत्रण में रखना क्या है? डायबिटीज को नियंत्रण में रखना क्रिकेट खेलने जैसा है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो मुख्य रूप से 3 बातें होती है। कौन सी? एक तो है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। ये तीनों चीजें ठीक होनी चाहिए। तो ऐसे ही डायबिटीज के नियंत्रण में भी 3 बातें हैं, आहार, एक्सरसाइज और तीसरी दवाइयां। और चौथी भी एक बात है, जैसे क्रिकेट टीम का कैप्टन सभी खिलाड़ियों पर नियंत्रण करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, या तो कहे कि क्रिकेट बोर्ड कुछ हद तक उन्हें कंट्रोल करता है। ऐसे ही चौथी बात है हमारा मन, कि जो दूसरी तीनों बातों को कंट्रोल करता है। इसीलिए जो चार पहलू हैं, इन चार पहलुओं को और तरीके से भी हम समझा सकते हैं कि ये चारों डायबिटीज नियंत्रण के पिलर्स है। आप ही सोचिए कि इन चार में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चार नंबर किस प्रकार से देंगे, थोड़ा सोचिए। सबसे पहले मैंने ये जो चार नंबर इस ख्याल से दिए हैं, भल हर बात इंपॉर्टेंट है, मन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु मन को संतुलित रखना, मन को शांत रखना, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। परंतु सबसे सरल बात कि जिसके लिए अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं और हमें बहुत प्राप्ति होती है डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में, वह है व्यायाम। सबसे पहले है व्यायाम, क्योंकि यह सरल सी बात जिसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें तो न केवल डायबिटीज नियंत्रण में आएगा परंतु और हमें करीब 15 फायदे होते हैं। साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू लिया गया है वह है आहार, क्योंकि जो हम आहार लेते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है खून में शुगर को कंट्रोल करने में। तीसरा पिलर है मन। मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु क्योंकि मन को संतुलित रखने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे मन का प्रयोग कर हम डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं। और चौथी बात है दवाइयां, इंसुलिन आदि की, जो भी महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य इन प्रवचनों का है कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वह हम लोगों के सामने रखें, और जब सही प्रकार से जानकारी लोगों को होगी तो डायबिटीज को नियंत्रण में रखने के लिए वह सही कदम भी उठाएंगे। देखा गया है कि कई डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन तो आवश्यकता से भी ज्यादा होता है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनके खून में इंसुलिन ज्यादा होता है, परंतु क्योंकि उनके शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। एक अगर सरल उदाहरण देना हो कि आप घर बंद करके एक साल के लिए कहीं बाहर चले गए हैं और जब एक साल के बाद आप वापस आते हैं तब आपके पास चाबी भी है, आप ताला खोलते हैं परंतु दरवाजा नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि उसे जंग लग गया है, और जब तक ठीक से दरवाजा नहीं खुलेगा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार डायबिटीज में भी भल खून में इंसुलिन है, परंतु क्योंकि वह ठीक से काम नहीं करता है, शरीर के अंगों को जंग लग गया है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और शरीर के अंग इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, उसके कार्य को ठीक से नहीं होने देते, जिससे शुगर का शरीर के अंगों में जाने का जो द्वार है वह नहीं खुलता है, और इससे खून में ही शुगर बढ़ती रहती है, शरीर के अंगों में नहीं जाती जहां पर उसकी आवश्यकता है। और कुछ पहलू हैं जैसे शरीर का वजन ज्यादा होना कि जिससे शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं, पेट में अगर चर्बी ज्यादा है तो भी शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं और इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कम व्यायाम करते हैं, उनमें भी यह इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण होता है। और साथ साथ में जब हम तनाव लेते हैं, जो भी चिंतित है, ईर्ष्यालु है, क्रोधी है, ऐसे लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण होता है और इंसुलिन कार्य नहीं कर पाता। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब इन विभिन्न पहलुओं में हम परिवर्तन लाएंगे तो डायबिटीज को नियंत्रण में रखना भी बहुत ही सरल हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आमतौर पर जब पहली बार डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है, आपको पता चलता है कोई ना कोई कारण से कि आपको डायबिटीज है, तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। जब आप घर में आके बताते हैं कि मेरे खून में डायबिटीज निकला है, तो घर के लोग भी तलवार खड़ी कर देते हैं कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा, यह नहीं करना है, वह नहीं करना है, और व्यक्ति भी घबरा जाता है। आमतौर पर मैंने कई मरीज देखे हैं कि जो ये कहते हैं कि डॉक्टर मुझे क्यों डायबिटीज हुआ, पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ, क्या भगवान को मैं मिला था कि जो मुझे भगवान ने डायबिटीज दे दिया। लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो वह भी गलत है। वास्तव में डरने की कोई बात नहीं, डर को समाप्त करना आवश्यक है। जो बात हो गई है उसके बारे में पछताने से हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि भूतकाल वह एक कैंसल चेक जैसा है, चेक अगर कैंसल हो गया तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यह भी कहा गया है कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, लेकिन जो वर्तमान है वह सचमुच हमारे हाथों में है। वर्तमान को अगर हम अच्छा बनाएंगे तो भूतकाल की कुछ गलतियां हैं उन्हें भी हम ठीक कर सकते हैं। और डायबिटीज में भले डायबिटीज कोई भी कारण से हुआ है, गलती हमारी ही है, परंतु अब भी उसे हम नियंत्रण में रख सकते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध तत्व चिंतक थे, उनको किसी ने कहा कि आपको एक सजा सुनाई जाती है कि कोई ना कोई एक बीमारी आपको दी जाएगी, परंतु इसमें अच्छी बात यही है कि आप अपनी बीमारी को स्वयं पसंद कर सकते हैं। जो भी आप बीमारी चाहे वह आपको सजा के रूप में दी जाएगी, तो आप कौन सी बीमारी पसंद करेंगे? उस तत्व चिंतक ने कहा कि मैं डायबिटीज को पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज हुआ तो मैं उसे कंट्रोल में तो रख पाऊंगा, और अगर मैं कंट्रोल में रखूंगा तो आम व्यक्ति के जैसा ही सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता हूं। दूसरे एक एडवोकेट थे, उन्होंने अपने अनुभव में यह बात बताई कि जब से डायबिटीज हुआ है मुझे बहुत फायदे हुए। क्या फायदा हुआ? एक तो यह फायदा हुआ कि पहले मेरा जीवन बिल्कुल अनियमित था, मैं समय पर खाना नहीं खा पाता था, कभी एक्सरसाइज तो की ही नहीं, परंतु जब से डायबिटीज हुआ है अभी मैं टाइम से खाना खाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं समय से भोजन नहीं करूंगा तो खून में शुगर बढ़ जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही मैं नियमित एक्सरसाइज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सरसाइज से ही मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। यहां तक कि बारिश होती है तो बारिश में भी मैं छाता लेकर के सवेरे पैदल करने जाता हूं, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे डायबिटीज हुआ तो जीवन में डिसिप्लिन आ गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यह नहीं समझो कि मुझे डायबिटीज है, परंतु यह समझो कि हम डिसिप्लिन वाले हैं, हम डायमंड बनने वाले हैं, बहुत ही श्रेष्ठ बनने वाले हैं। साथ साथ यह भी याद रहे, कहा गया है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसे आसमान नहीं मिलता। कभी तो पैरों तले बिछा करते हैं गालीचे, परंतु मरते वक्त कफन तक नहीं मिलता। तो जो भाव है कि किसी व्यक्ति को सब चीजें नहीं मिलती, यह न सोचिए कि मुझे क्यों डायबिटीज हुआ। आपको पता नहीं कि आपके पड़ोसी के घर में रोज कितना झगड़ा होता है, उसके कारण जो दुख और समस्याएं खड़ी होती है वह बहुत ही विशाल है। आपके कलीग का लड़का ड्रग्स लेने लगा है, वह समस्या शायद आपके डायबिटीज से भी बहुत ही खतरनाक है। इसलिए सदैव हम मन का संतुलन रखें। इस विषय में हम और भी आगे के प्रवचनों में चर्चा करेंगे, और कुछ समय के बाद जब 5 मास 6 मास बीत जाते हैं और व्यक्ति का डर खत्म हो जाता है तो वह बिल्कुल लापरवाह होता है। अधिकतर मरीज नियमित रूप से अपने खून में शुगर की जांच भी नहीं करते, वह समझते हैं कि हमको पता पड़ जाता है। बहुत सारे मरीजों ने मुझे कहा है कि डॉक्टर हम चेक नहीं करते क्योंकि जब हमारे खून में शुगर बढ़ जाती है तो हमें पता पड़ जाता है, परंतु याद रहे कि आपको पता नहीं पड़ता। एक अनुसंधान भी किया गया था कि जिसमें करीब 300 मरीजों को उनके खून में जब शुगर चेक की गई तब सबको पूछा गया कि आप अनुमान लगाइए कि आपके खून में अभी शुगर कितनी होगी। तो सभी ने अपना अपना अनुमान लगाया, किसी ने कहा कि 150 होगी, किसने कहा 110 होगी, परंतु जो सभी ने अनुमान लगाया वह गलत था, किसी का भी अनुमान सही नहीं था। इसलिए हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और भी कई टेस्ट जो जरूरी है वह टेस्ट हमें करानी चाहिए, और वैसा हम कराएंगे तो कोई भी बीमारी पहले ही पकड़ी जाएगी और आम लोगों से भी हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। आप आम लोगों से भी ज्यादा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जोड़ों का दर्द ऐसे और बहुत सारी समस्याएं हैं वह समस्याएं नहीं होगी। डायबिटीज क्या है? समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक अगर सरल सा उदाहरण लेना हो कि आप 3 मंजिल के मकान में रहते हैं और पंप के द्वारा नीचे से पानी 3री मंजिल पर आपके घर में आता है, रोज जब आप नल खोलते हैं तो आपको पानी मिल जाता है, परंतु कब ऐसी समस्या आए कि वह पंप फेल हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको पानी नहीं मिलेगा? सिर्फ इतना ही आपको कष्ट लेना पड़ेगा कि नीचे से बाल्टी उठा करके आपको पानी 3री मंजिल तक लाना पड़ेगा। बस ऐसी ही बात डायबिटीज में भी है कि मेरे जैसे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनमें ऑटोमेटिकली भल कभी वो कुछ ज्यादा खा ले या कभी नहीं खाए तो भी खून में उनकी शुगर है वह सामान्य रहती है, बहुत कम भी नहीं हो जाती, आवश्यक से ज्यादा बढ़ती भी नहीं। परंतु डायबिटीज में आपको पुरुषार्थ करके, नियमित एक्सरसाइज कर करके, डाइट का ध्यान रख के और बातें जिनकी हम चर्चा करेंगे, इनके द्वारा आपको खून में ब्लड शुगर को सामान्य रखना है। और ऐसा आप कर पाए तो जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनसे भी अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। साथ साथ डायबिटीज में आम तौर पर हम कहते हैं कि यह क्या है, डायबिटीज में यह चोर और पुलिस का खेल है, वास्तव में यह पकड़ा पकड़ी का खेल है। पेशेंट है वह चोर है और डॉक्टर वह पुलिस है। कि जैसे आपको अगर एक बार डायबिटीज हुआ तो एकाध साल के पश्चात आप ब्लड में शुगर को ज्यादा चेक नहीं कराते, जब डॉक्टर के पास जाना है या तो परिवार के सदस्य कहते कि नहीं नहीं तुम अभी जाके ब्लड शुगर चेक कराओ, तुम्हारी बढ़ गई होगी, तो आप 6 दिन 8 दिन बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, अच्छी तरह से परहेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट में रिपोर्ट आता है कि आपके खून में शुगर 110 है, तो ये रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है बहुत अच्छा तुम्हारी ब्लड में शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कभी कभी मैं एक छोटा सा लड्डू खा सकता हूं, तो डॉक्टर कहते ठीक है आपके खून में तो शुगर नॉर्मल है, कभी कभार आप खा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप सप्ताह में एक बार या दो बार लड्डू खाने लगते हैं, फिर से 2-3 मास बीत जाते हैं और जब चेक कराने की बारी आती है तो आप दोबारा 15-20 दिन बिल्कुल कंट्रोल करने लगते, और आप फिर से जब ब्लड शुगर चेक कराते हैं तो वह निकलती है 115 या 120, ये लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर से डॉक्टर कहते हैं कि बहुत अच्छा रिपोर्ट है तुम्हारा ब्लड शुगर कंट्रोल में है, तो फिर आप सोचने लगते हैं कि देखो मेरा ब्लड शुगर तो कंट्रोल में, फिर रोज लड्डू खाना शुरू कर देते हैं। अब जब 3री-4थी बार भी ब्लड शुगर करानी हो तो दोबारा ऐसे बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गई। ऐसे साल साल बीतते जाते हैं और अंत में एक दिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है कि आंखों की रोशनी खत्म हो गई, पैरों में बहुत बड़ा अल्सर हो गया, किडनी फेल होने लगी, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो तभी आप जागते कि अरे रे बड़ी समस्या हो गई। परंतु वास्तव में गलती हमारी ही थी कि हमने सिर्फ थोड़ा ही समय परहेज कर करके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा वह गलत बात है। तो इसलिए यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सदा के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है। इसके लिए एक दूसरी टेस्ट भी है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसे कहा गया है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, कि जो पिछले 3 मास में आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल कैसा है उसकी वह जानकारी देता है। और जो मुख्य और 5वां उद्देश्य है इन प्रवचनों का, कि भल अब तक जो अनुसंधान हुए हैं इसी से तो यही पता लगा है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते, उससे पूरी तरह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर भी इन प्रवचनों में हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाहते हैं कि जिससे कुछ हद तक हम डायबिटीज को क्योर भी कर सके। क्योंकि डायबिटीज क्या है? जो इंसुलिन को निर्माण करने वाली ग्रंथि है पेट में, जिसे पेनक्रियाज या तो स्वादुपिंड कहते हैं, और उसकी जो बीटा कोशिकाएं हैं वह बीटा कोशिकाएं बहुत थक गई है, उसने काम करना कहे कि बंद कर दिया है। तो जब आप घर में शादी या और कोई इस प्रकार की परिस्थिति और बहुत थक जाते हैं, तब क्या करते हैं? शादी के बाद अधिक आराम कर लेते हैं। तो ऐसे ही अब आवश्यकता है कि हमें इस पेंक्रियास की ग्रंथि को आराम देना है, और उस बीटा सेल्स को अगर ठीक से आराम मिल जाए तो फिर से उनमें चेतना आएगी, फिर से वह सही मात्रा में इंसुलिन व निर्माण कर सकेंगे। तो यह भी एक उद्देश्य है, हमने कुछ अनुसंधान भी किए हैं जिसके द्वारा भी यह पता चला है कि सचमुच संभव है कि हम कुछ हद तक डायबिटीज को रेस्ट दे पाए, और अगर डायबिटीज क्योर हो जाए तो हमें भी फायदा होगा और आने वाली अनेक पीढ़ियों को भी इसके द्वारा बहुत बड़ा फायदा होगा। ओम शांति। ओम शांति। माउंट आबू में आयोजित एक डायबिटीज नियंत्रण शिविर में आए हुए करीब 50 मरीजों को जब यह पूछा कि डायबिटीज क्या है, तो आश्चर्य की बात थी कि किसी को भी सही उत्तर का पता नहीं था कि सचमुच डायबिटीज क्या है। तो यह जानकारी सचमुच ही जरूरी है। सबसे पहले तो हम डायबिटीज के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। आयुर्वेद में भी डायबिटीज का जिक्र है। करीब 7-8 प्रकार के मधुमेह का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। तब भले यह सही पता नहीं था कि यह क्यों होता है, परंतु आमतौर पर लोग जानते थे कि डायबिटीज के मरीज के पेशाब में ज्यादा शुगर होती है, तो वह जहां भी पेशाब करता था वहां बहुत सारे कीटाणु इकट्ठे हो जाते थे। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की तो आखिरी यह पता चला कि कुत्ते में जब स्वादुपिंड की ग्रंथि, पेट में जो पेनक्रियास की ग्रंथि है, उसको काट दिया गया तो उन्हें डायबिटीज हो गया, ब्लड शुगर उनकी बढ़ गई। इससे पता चला कि यह ग्रंथि महत्वपूर्ण है। आगे चलते चलते यह भी जानकारी मिली कि इस स्वादुपिंड की पूंछ में ऐसी कोशिकाएं हैं कि जो एक टापू की तरह, आइलैंड्स की तरह है, और वह कुछ रस निर्माण करती है कि जिसके कारण खून में शुगर कंट्रोल में रहती है। ऐसे ही जैसे जैसे अनुसंधान होते गए, लैंगरहन ने इस बात के बारे में पूरी जानकारी दी, इसीलिए इन कोशिकाओं को आइलैंड्स ऑफ लैंगरहन कहा गया है। और जब तक 1921 में इंसुलिन की शोध हुई, तब तक लोग यही मानते थे कि अगर डायबिटीज हुआ अर्थात कि हमारे शरीर का वजन कम होता जाएगा और आखिरी हम मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। फ्रांस के प्रसिद्ध व्यक्ति थे एच जी वेल्स, उनको भी डायबिटीज हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मरना ही है, क्यों ना मैं खुशी से आनंद में मरूं। इसलिए वह फ्रांस के एक टापू पर जाकर के रहने लगे और खूब शराब पीते थे। सोचा कि बस अपने गम को मैं भूल जाऊं और आखिरी मरना तो है ही, भल शराब का बुरा असर हो। परंतु उन दिनों ही इंसुलिन की शोध हुई और उनके एक मित्र ने उन्हें पत्र लिखा कि देखिए अभी यह नया इंजेक्शन निकला है, उसके द्वारा डायबिटीज बिल्कुल नियंत्रण में आ जाता है, आप वापस आइए। और एचजी वेल्स वापस आए और बहुत लंबा जिए। तो इंसुलिन की शोध ने डायबिटीज के मरीजों में एक बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन ला दिया, उसे हम कंट्रोल में रख पाए। एक ये रोचक सी बात है कि इंसुलिन की शोध एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने की है, डॉक्टर बेंटिंग और उनके स्टूडेंट थे डॉक्टर बेस्ट, कि जिन्हें भी प्रेरणा हुई, वे इस पर अनुसंधान कर रहे थे, उन्हें यह प्रेरणा हुई कि तुम इस पेनक्रियास की जो ग्रंथि है उसमें से निर्माण होने वाला एक्सट्रैक्ट या तो जो रस आदि निर्माण होते हैं उसके ऊपर अनुसंधान करो तो तुम्हें सही दवाई का पता चल जाएगा। और जब अनुसंधान किए गए तो सचमुच ही इंसुलिन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और आज लोगों के जीवन में इस इंजेक्शन से बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो यह थोड़े से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अब हम फिर से पहले प्रश्न पर आते हैं कि डायबिटीज क्या है। अगर डायबिटीज की परिभाषा देखनी हो तो डायबिटीज अर्थात कि खून में आवश्यकता से ज्यादा शुगर का बढ़ जाना और उसके कारण जो सारे शरीर में खराबी निर्माण होती है, एक सिंड्रोम निर्माण होता है कि जिसमें अलग अलग समस्याएं होती है, उस सारे सिंड्रोम को डायबिटीज कहेंगे। अब हम यह भी थोड़ा सा विचार करें कि यह खून में शुगर बढ़ने की क्या बहुत बड़ी समस्या क्यों है, इसके कारण क्यों लोग इतना इसके बारे में चर्चा करते हैं या तो शरीर पर यह बहुत ही बड़ी असर निर्माण होती है। तो खून में शुगर बढ़ती है परंतु शरीर के अंगों को वह शुगर नहीं मिलती है कि जहां पर उसकी आवश्यकता है। और क्योंकि शरीर के अंगों को वह शुगर नहीं मिलती है इसके कारण समस्या निर्माण होती है। फिर से भी हम इस विषय की चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा यह देखें कि डायबिटीज होने के मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है डायबिटीज। जो अब तक हमारे पास जानकारी उपलब्ध है इससे हम कुछ नतीजे पर आ सकते हैं कि सचमुच डायबिटीज क्यों होता है। चाइना में डायबिटीज बहुत कम है, करीब 1-2% है, परंतु जो चाइना के लोग मॉरिशियस में जाकर के रहे हैं और मॉरिशियस की जीवन पद्धति को उन्होंने अपना लिया है, उनमें डायबिटीज का प्रमाण करीब 12% जितना है। ऐसे ही जापान में भी डायबिटीज कम है, परंतु जापान के लोग जो अमेरिका में जाकर के बसे हैं तो वहां पर उन्हें डायबिटीज बहुत ही ज्यादा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के लोग जो इंग्लैंड में जाकर के रहे हैं उनमें भी डायबिटीज का प्रमाण काफी ज्यादा है। तो इन सब से यह पता चलता है कि हमने जो मॉडर्नाइजेशन को जब अपना लिया तो उससे जो जीवन में परिवर्तन आए वह परिवर्तन डायबिटीज को निर्माण करने के लिए एक रूप से जिम्मेवार है। कौन से परिवर्तन? सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारा जीवन बहुत फास्ट हुआ, तेजी से लोगों को काम करना पड़ता है, समय बहुत कम होता है। और यह जो फास्ट लाइफ हुई वह फास्ट लाइफ के कारण एक तो तनाव निर्माण हुआ और वह तनाव डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। और यह तनाव इसलिए भी निर्माण हुआ क्योंकि हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ गई, हम लोगों के साथ अपनी तुलना करने लगे। और अगर मेरे पड़ोसी के पास कुछ चीजें हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, मेरे पास नहीं है, तो हम डिस्टर्ब होते हैं, हम टेंशन में आते हैं। इसी प्रकार से लोकस ऑफ कंट्रोल भी इंटरनल होने के बदले अब एक्सटर्नल हो गया है। पहले व्यक्ति की आवश्यकताएं भी कम थी, वो अपने विचारों से ही अपने आप में संतुष्ट रहता था, परंतु अब हम बाह्य चीजों को देखते हैं और बाह्य सुख सुविधा के साधन, प्रशंसा और बहुत सारी चीजें कि जो हमारे आंतरिक कंट्रोल में नहीं है, वह चीजें हमारे मन की अवस्था को कंट्रोल करने लगी है और उसके कारण भी तनाव बढ़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वह वर्तमान जीवन पद्धति में आई है कि हमें एक्सरसाइज बहुत कम मिलती है। आज व्यक्ति घर से नीचे उतरता है, बस या तो गाड़ी के द्वारा ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस में सारा दिन बैठ करके काम करता है, वैसे ही वापस वह घर आ जाता है, और क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं मिलती, इससे भी डायबिटीज का प्रमाण बढ़ा है। और आज बच्चे भी देखो एक्सरसाइज नहीं करते, बच्चे कौन सी गेम खेलते हैं, आज के बच्चे वीडियो गेम खेलने लगे हैं। पहले हम जाकर के जिसमें दौड़ना पड़े, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, ऐसी और गेम्स खेलते थे कि जिसके कारण उन्हें बहुत एक्सरसाइज मिलती थी, परंतु अब एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे आहार में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि आज फास्ट फूड का जमाना है कि भी जो चीजों को जल्दी ही हम बस तैयार मिल जाए और खा ले, फल सब्जियां व नाम मात्र भी हम नहीं लेते हैं। तो यह फास्ट फूड से भी एक तो चर्बी शरीर में इकट्ठी होती है और जब चर्बी ज्यादा निर्माण होती है तो उससे भी डायबिटीज का प्रमाण है वह बढ़ा है। देखा गया है कि जिनका शरीर का वजन ज्यादा है, आवश्यकता से 20% से ज्यादा अगर उनके शरीर का वजन है तो उनको डायबिटीज होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। और एक विशेष बात देखी गई है कि जिनका पेट आगे है, भले ऐसे तो वो दुबले पतले हैं, परंतु उनका सिर्फ पेट आगे आया हुआ है, तो ऐसे लोगों में भी वह जो पेट की चर्बी है वह शरीर के अंगों पर बुरा असर डालती है और उससे भी डायबिटीज होने की संभावना है वह ज्यादा देखी गई है। इसी प्रकार कि आज आहार में हम घी तेल का उपयोग बहुत करने लगे हैं। हम एक बार पंजाब में इस प्रकार के प्रवचन देने के लिए गए थे और वहां के लोगों को कहा कि आपको घी नहीं खाना चाहिए, घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रवचन पूरा होने के बाद एक सरदार जी खड़े हो गए और वो कहने लगे, हाँ डॉक्टर साहब आप सही कहते हैं, हम लोग घी खाते नहीं, हम तो घी पीते हैं। तो सही बात है कि पहले लोग घी सचमुच पीते थे, परंतु वो उनके लिए आवश्यक था। अगर वह घी नहीं पीते तो शायद बीमार हो जाते, क्योंकि वह सवेरे से खेत में जाकर के 6-7 घंटा मेहनत करते थे और इसलिए उनको बहुत ज्यादा कैलोरी की, बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती थी और इसलिए उनको घी पीना जरूरी था। परंतु आज अगर वही हम जीवन पद्धति को अपनाए रखेंगे तो डायबिटीज होने की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसे ही फास्ट फूड से और एक बहुत बड़ी बात भी आई है कि आज हमें लगता है कि पैकेट्स में बहुत अच्छा फास्ट फूड मिल रहा है और उसी चिप्स या और सभी चीजों का हम उसको खाए, उसका सेवन करें और उसमें पैकेट्स पर लिखा भी हुआ है होता है कि भी इसमें हमने 5 विटामिन्स ऐड किए हैं, परंतु वह एक गलत जानकारी है, सही जानकारी नहीं दी गई है। पहले तो उन्होंने इस प्रकार से उस फास्ट फूड को तैयार किया कि उसके सारे विटामिन जल गए, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वह सब खत्म हो गए और उसके बाद उसमें कुछ विटामिन्स ऐड कर दिए और पैकेट पर लिख दिया कि हमने इतने विटामिन, इतने एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाले हैं। ये ऐसा उदाहरण है कि अगर मैं कहीं पर जा रहा हूं और आप मेरा बटवा चुरा लेते हैं, तो एक बार तो आपने मेरा बटवा चुरा लिया, परंतु जब मैं बस में बैठता हूं और कंडक्टर टिकट मांगने के लिए आता है, मैं अपना बटवा ढूंढने लगता हूं, बटवा नहीं मिलता है तो मैं चिंतित होता हूं, दुखी होता हूं, तो आप मुझे पीछे से कहते हैं कि लो भाई साहब 10 रुपये ले लो, आपके पास टिकट लेने के पैसे नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे पर बहुत बड़ी मेहरबानी की, परंतु वास्तव में मेहरबानी नहीं की है, पहले तो मेरा बटवा चुरा लिया था और उसके बाद मुझे 10 रुपये दिए। तो ये फास्ट फूड में भी ऐसी ही बात होती है वास्तव में जो घर में पकाया हुआ खाना है और वह भी सही रूप से अगर हम बनाते हैं, जिसकी भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे, तो जो आवश्यक विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स आदि है, वह उसी स्थिति में रहते हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यह सभी मॉडर्नाइजेशन के मुख्य कारण है कि जो डायबिटीज को निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं। भल हेरिडिटी भी, कि अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर माँ बाप में से किसी एक को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना करीब 25-30% रहती है, और अगर दोनों को, माँ और पिता दोनों को डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना करीब 55-60% जितनी होती है। परंतु क्योंकि हेरिडिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने माँ बाप को पसंद नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा और भी जो मुख्य कारण है डायबिटीज होने के, वह सारे कारण हमारे कंट्रोल में है, और जितना उसे हम कंट्रोल करेंगे, बचपन से ही बच्चों को भी उसी प्रकार की जीवन पद्धति सिखाएंगे, तो उनको डायबिटीज होने की संभावना भी कम हो जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि भल हो सकता है कि मेरे पिता को भी डायबिटीज था तो मुझे डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है, परंतु अगर मैं नियमित सही जीवन प्रणाली को अपनाता हूं तो वह जीन्स का जो मैनिफेस्टेशन है, जीन्स जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उस प्रभाव को मैं कम कर सकता हूं। और अगर मैं सही जीवन प्रणाली को न अपनाऊं तो हो सकता है कि 35 या 40 साल में मुझे डायबिटीज हो जाता, परंतु क्योंकि मेरी जीवन प्रणाली सही है तो मुझे 60 या 70 साल में डायबिटीज होगा, तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसीलिए बच्चों को भी यह जानकारी देनी चाहिए। और मैं तो यह कहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी आप इन प्रवचनों को जरूर सुनिए, क्योंकि इससे एक बहुत आवश्यक चीज भविष्य में होने वाली है, उससे आप बच सकेंगे। जब मैं 1978 में सेकेंड MBBS में पढ़ता था तो तब करीब 1000 एडल्ट, जो 25 साल से बड़ी आयु वाले लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को डायबिटीज होता था। और इन दिनों किताबों में भी डायबिटीज के बारे में बस 1-2 पेज ही होते थे, ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। और एक बार पता चला कि हॉस्पिटल के एक वार्ड में डायबिटीज का मरीज है, वह दाखिल हुआ है, तो सारे विद्यार्थी वहां भाग करके गए कि अरे ये नया किस्सा आया है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि डायबिटीज में क्या क्या चिन्ह होते हैं, पता कैसे पड़े कि इनको डायबिटीज है। और 10 साल के बाद करीब 1990 में 100 एडल्ट में से एक को डायबिटीज हो गया। और अभी 2002 में हम देखते हैं कि करीब 10 एडल्ट में से एक को डायबिटीज है। विश्व स्वास्थ्य संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले 25 सालों में भारत में हर 3 व्यक्ति में से एक को डायबिटीज होगा, तो हर परिवार में 1 या 2 व्यक्ति को डायबिटीज होगा। इसलिए हरेक के लिए जो जानकारी इन प्रवचनों में दी जा रही है वह बहुत ही आवश्यक है, और उससे आप अपने स्वास्थ्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। अब इस बात पर हम थोड़ा सा और गहराई से विचार करें कि डायबिटीज में क्या क्या समस्याएं होती है, उसके क्या चिन्ह होते हैं। आमतौर पर कई लंबे समय तक डायबिटीज के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। इसीलिए भारत में यह देखा गया है कि जब पहली बार आपको कोई बीमारी होती है, आपका ऑपरेशन करना पड़ता है, पैरों में कहीं पर अल्सर हो गया है, और ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप रक्त की जांच कराइए, और तब पता चलता है कि आपके रक्त में शुगर बहुत ही ज्यादा है, तो वास्तव में यह जो रक्त में शुगर है वह कम से कम 5-6 सालों से अधिक थी, परंतु आपको पता ही नहीं था। जब यह चेकिंग कराई गई तब आपको पता चला, अर्थात कि इसके कोई चिन्ह कहीं बार दिखाई नहीं देते हैं। परंतु सामान्य रूप से डायबिटीज में क्या चिन्ह दिखाई देते हैं, और हम थोड़े से उदाहरणों के द्वारा यह देखें कि कौन से चिन्ह हो सकते हैं। जो बात मैंने पहले भी समझाई है, कि डायबिटीज में जब खून में शुगर बढ़ जाती है और शरीर के अंगों को शुगर नहीं मिलती है, जब शरीर के अंगों को शुगर नहीं मिलती है जहां पर उसकी आवश्यकता है, तो वह उसकी मांग करते हैं कि हमें शक्ति चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और इसके कारण व्यक्ति को जोरों से भूख लगती है, क्योंकि वह कुछ खाएगा तो उसे शक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले डायबिटीज के मरीज को बहुत ज्यादा भूख लगती है। दूसरी बात कि भल वह ज्यादा खाता है, क्योंकि खून में तो शुगर ज्यादा है तो वह खाता तो ज्यादा है, परंतु फिर भी शरीर के अंगों को वह शुगर नहीं मिलती है, और शरीर के अंगों को जब वह शुगर नहीं मिलती है तो उसका वजन आखिरीन कम होता जाता है, क्योंकि जो शक्ति का निर्माण होना चाहिए वह शक्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए दूसरी बात है कि डायबिटीज के मरीज ज्यादा खाते हैं फिर भी उनका शरीर का वजन है वह कम होता जाता है। तीसरी बात कि जब खून में शुगर बढ़ गई तो किडनी यह कोशिश करती है कि रक्त में जो ज्यादा शुगर है उसको शरीर के बाहर फेंक दिया जाए। तो जब किडनी कोशिश करती है उस शुगर को शरीर के बाहर फेंकने की, तो सिर्फ शुगर शरीर के बाहर नहीं जा सकती है, उसके साथ साथ पानी भी निकल जाता है, और जब पानी अधिक निकलता है तो व्यक्ति को ज्यादा पेशाब होता है। शुरू में तो उसे बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, कुछ वर्षों के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में उसे पेशाब होता है, और जब खून से शुगर और पानी ज्यादा शरीर के बाहर निकल गया तो उसे प्यास भी लगती है, क्योंकि खून में पानी की मात्रा कम हो गई। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को प्यास भी बहुत ही ज्यादा लगती है। और जो मुख्य लक्षण है कि कहीं पर भी अगर चोट लग जाए तो, क्योंकि खून में ज्यादा शुगर है तो सभी बैक्टीरिया वायरसेस आदि वहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते, पस बन सकता है, या तो कहीं पर अल्सर होने से या चोट लगने से वह ठीक हो जाता है, वह हील हो जाता है, वह हीलिंग प्रोसेस में काफी समय लग सकता है। पर सबको ऐसा नहीं होता, यह भी ये गलत फहमी है। कहीं डायबिटीज के पेशेंट कहते हैं कि क्योंकि हमें कहीं चोट लगती है तो ठीक हो जाती अर्थात हमारा डायबिटीज कंट्रोल में है, ऐसी बात नहीं। 50-60% का हीलिंग प्रोसेस ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी और जो खराबियां हैं, और खराबियां तो उनके शरीर में हो ही रही है। साथ साथ उन्हें पेशाब के हिस्से में और हिस्सों में भी इन्फेक्शन की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। और जो कुछ चिन्ह निर्माण होते हैं उसको हम दूसरे एक उदाहरण से देखेंगे कि व्यक्ति को कमजोरी लगती है, शक्ति का एहसास नहीं होता। डायबिटीज क्या है? अगर आपके शहर में कहीं पर ओवर ब्रिज बन रहा है और वह ओवर ब्रिज के लिए कोई फैक्ट्री से सीमेंट आता है, परंतु वह फैक्ट्री में अगर हड़ताल हो जाए, स्ट्राइक हो जाए और वहां पर सीमेंट नहीं बने, तो क्या होगा? फिर भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वह पुल को तो बनाएगा, वह ब्रिज बनाएगा, परंतु वह सीमेंट में मिलावट कर देगा, मिट्टी डाल देगा और कुछ मिलावट करेगा, तो जो ब्रिज है वह कमजोर बनेगा। ऐसे ही जब हमारे शरीर में भी ठीक प्रकार से ग्लूकोज, शुगर और जो आवश्यक चीजें वह नहीं मिलती है, तो जो शरीर के अंग है उनमें भी कमजोरी आने लगती है। और कुछ इस प्रकार के भी चिन्ह होते हैं कि जो जिसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, कि जो आपके खून में शुगर बढ़ी है वह शुगर बढ़ने के कारण जो दूसरी समस्याएं निर्माण होती है, और वह समस्याएं अलग अलग प्रकार के चिन्ह निर्माण करती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां निर्माण करती है, इसकी भी हम आगे चल करके चर्चा करेंगे कि हमें पूरा पता चल जाए। थोड़ा सा पहले हम यह देख ले कि खून में जो शुगर है वह कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब मैं प्रवचन देने के लिए जाता हूं तो बहुत सारे मरीज इकट्ठे हो जाते और कहते डॉक्टर साहब हमको बताइए कि हमारा रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। परंतु मैं समझता हूं कि आपको डायबिटीज है तो आपको स्वयं पता होना चाहिए कि खून में कितनी शुगर होना सचमुच सही है या मुझे कितना कंट्रोल में रखना है। आप दो प्रकार से खून में टेस्टिंग करते हैं, एक तो सवेरे सवेरे खाली पेट करीब 7-8 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं और जो आप खाली पेट खून में शुगर को चेक करते हैं और दूसरा भोजन करने के करीब 2 घंटे के बाद जो आप ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं, तो यह दोनों की मात्रा हमें जाननी चाहिए। जो फास्टिंग शुगर है वह कम से कम आप 125 से कम जरूर रखिए। बल आमतौर पर लेबोरेटरी में आप देखते हैं कि जो आपको रिपोर्ट मिलता है उसमें लिखा होता है कि भाई 110 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु अभी जो नए अनुसंधान हुए हैं उसमें यह पता चला है, जिसे कहते हैं कि यह स्वीकार करने योग्य लिमिट है, कि करीब 125 से आप कम रखते हैं तो भी वह ठीक है, और जो 2 घंटे के बाद आप टेस्टिंग करते हैं वह 180 से कम होनी चाहिए, और बहुत कम भी ना हो, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। परंतु ये लिमिट्स को अगर आप एक बार जान लेते हैं तो अपने आप अपने रिपोर्ट्स को देख पाएंगे, और दोनों इंपॉर्टेंट है। खाली पेट जो आप ब्लड शुगर करते हैं वह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह बढ़ गई तो रात भर करीब 5-6 घंटे तक वह ब्लड शुगर आपकी बढ़ी रही और वह भी हानिकारक है। ओम शांति। करीब 30 वर्ष पहले एक बहुत धनी परिवार के लड़के को डायबिटीज हुआ, परंतु वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। मां बाप बहुत उसे समझाते थे कि बेटे तुझे यह नहीं खाना चाहिए, इन चीजों की तुझे परहेज करनी चाहिए, तू रोज नियमित एक्सरसाइज कर। वो बहुत सिगरेट भी पीता था, उसे यह भी बताते थे कि तू सिगरेट पीना छोड़ दे, नहीं तो डायबिटीज में जो होने वाली समस्याएं हैं वो और भी बढ़ जाएगी, परंतु वह किसी का सुनता नहीं था। एक बार एक डॉक्टर को उनके पिता ने कहा कि मेरे बच्चे की यह समस्याएं, वह इस बातों को मानता ही नहीं है, हमने उसे बहुत समझाया फिर भी वह जीवन प्रणाली में परिवर्तन नहीं ला रहा है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा, कल तुम अपने बेटे को मेरे पास भेजना, मैं उसे कुछ बातें समझाऊंगा, हो सकता है कि उसका असर हो। तो जब दूसरे दिन वह लड़का डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे पूछा, तुम क्या करते हो, कैसे हो, और फिर बताया कि देख, तुझे तो लोग सब कहते हैं कि तू यह नहीं कर, ऐसा नहीं कर, परंतु मैं तुझे आज एक राय देता हूं कि तू बिल्कुल कोई भी कंट्रोल नहीं कर, जरूरत नहीं है, परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। देख, डायबिटीज हुआ तो तुझे आगे चलकर के बहुत फायदा होगा। एक तो फायदा यह होगा कि तुझे कभी कुत्ते नहीं काटेंगे, दूसरा फायदा तुझे यह होगा कि लोग तेरी खूब सेवा करेंगे, तीसरा फायदा तुझे यह होगा कि तुझे कोई तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ेगी, तुझे कोई कष्टदायक काम नहीं करना पड़ेगा। और यह बता करके डॉक्टर ने उसे वापस भेज दिया। जब वह घर गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि मां बाप और सब डॉक्टर मुझे कहते हैं कि तुम्हें आहार में यह परहेज करनी चाहिए, तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, परंतु यह डॉक्टर तो कहते तू कुछ भी नहीं कर, तुझे बहुत सारे फायदे होंगे। उसे सारी रात नींद नहीं आई, सवेरे सवेरे उठ करके जैसे ही क्लिनिक खुला वह डॉक्टर के पास पहुंच गया और डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए, कल मुझे रात भर नींद नहीं आई, कि आपने जो कहा यह सब फायदे मुझे कैसे होंगे। तो डॉक्टर ने कहा, देख बैठ, मैं तुझे समझाता हूं कि तू डायबिटीज को बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रखेगा तो कुछ समय के बाद तेरा पैर खराब होने लगेगा और तेरा एक पैर काटना पड़ेगा, और एक पैर हम काट देंगे तो तू लकड़ी लेकर के घूमेगा, और तू लकड़ी लेकर के घूमेगा तो कुत्ते तो पास आ नहीं सकते, इसलिए कभी भी तुझे कुत्ते नहीं काटेंगे। फिर और भी तू इसे कंट्रोल में नहीं रखेगा, और भी जो खाना है वह खाता रहेगा, तो कुछ समय के बाद तेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी और जब तुझे देखना बंद हो जाएगा, ब्लाइंडनेस आएगी, तो तू तो बहुत पैसे वाला है, तेरे साथ हमेशा नौकर चाकर फिरते रहेंगे, तुझे तो कोई कष्ट होने वाला नहीं, और भी तू डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखेगा, जो खाना है वो मर्जी खाता रहेगा, तो कुछ समय के बाद तेरी याददाश्त खत्म हो जाएगी, तुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो काम भी नहीं करना पड़ेगा। तेरे पिता के पास तो बहुत पैसे है, तू आराम से कुछ काम नहीं करेगा तो भी खा पी के आराम से जीवन जी सकेगा, और कुछ समय तक तू डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखेगा तो तेरा दूसरा पैर भी कटवाना पड़ेगा, तो तुझे पालखी में लेकर के लोग घूमेंगे, इसलिए तू जरा भी चिंता नहीं कर, डायबिटीज से बहुत फायदे होते। जैसे उसने ये सुना, बहुत सोचने लगा, बहुत घबरा गया। उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, सभी बातें पालन करने लगा, धूम्रपान करना भी उसने छोड़ दिया। तो यह तो सिर्फ एक हंसी की बात थी, परंतु सचमुच ही डायबिटीज से शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी हमें जानना चाहिए। और अधिकतर जो मरीज है वह डॉक्टर के पास कई बार तब ही आते हैं तब जो डायबिटीज के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं वह समस्याओं के वह शिकार हो गए होते हैं। और यह समस्याएं क्यों होती है, एक सरल सा हम उदाहरण लेंगे कि आपका बच्चा सवेरे सवेरे स्कूल में जाता है और जब वह स्कूल से वापस लौटता है तब आपने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, परंतु खाने को फ्रीज में रख दिया है और गलती से फ्रीज की चाबी है वह गुम हो गई। जब बच्चा वापस आता है तो वह फ्रीज की चाबी नहीं मिलती है, तो क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा बच्चा? पहले तो खाना मांगेगा कि मां खाना दे दो, परंतु आप ढूंढते रहते हैं और नहीं मिलती है चाबी, तो बच्चा क्या करेगा? वह रोने लगेगा, चिल्लाएगा। तो ऐसे ही जब शरीर के अंगों को भी शुगर नहीं मिलती है कि जिसकी आवश्यकता है, तो शरीर के अंग भी रोते हैं, शरीर के अंग भी चिल्लाते हैं। फिर भी अगर शरीर के अंगों को जो ग्लूकोज की आवश्यकता है वह ग्लूकोज नहीं मिलती है, जैसे बच्चे को अगर फिर से खाना नहीं मिले तो वह क्या करेगा? हो सकता है कि वह पड़ोसी को जाकर के कहेगा कि मुझे घर में खाना नहीं मिल रहा है, आप कुछ खाना दे दो ना। तो इसी प्रकार जब शक्ति नहीं मिलती है तो शरीर शुगर से शक्ति प्राप्त करने के बदले चर्बी को तोड़ करके शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब वह चर्बी को तोड़ करके शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसमें से कीटोन बॉडीज निर्माण होते हैं, और जैसे जैसे कीटोन बॉडीज शरीर में बढ़ते जाते हैं तो उसके कारण भी समस्याएं निर्माण होती है। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे कहा जाता है कीटो एसिडोसिस, कि जिसमें व्यक्ति को वॉमिटिंग होने लगती है, पेट में बहुत ही दुखता है और वह आखिरी बेहोश भी हो सकता है। तो यह एक डायबिटीज की बहुत बड़ी समस्या है, परंतु इसके साथ साथ जैसे डायबिटीज बढ़ने से यह कीटो एसिडोसिस की बीमारी है वह हो सकती है, बहुत बड़ी भयंकर समस्या सामने आ सकती है, परंतु इतनी ही भयानक और एक समस्या है कि जो है कि खून में ब्लड शुगर बहुत कम हो जानी, डायबिटीज अर्थात कि जो सामान्य रूप से खून में ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है वह कंट्रोल में नहीं रह पाती है, और जब कम होती है अगर ठीक से भोजन न मिले तो खून में ब्लड शुगर बहुत कम भी हो सकती है, और जब खून में शुगर आवश्यकता से कम हो जाती है और विशेष रूप से डायबिटीज के मरीजों में, क्योंकि उनमें आमतौर पर खून में शुगर ज्यादा होती है, इसलिए शरीर को यह आदत पड़ गई है कि वह ज्यादा शुगर के साथ एडजस्ट हो गए हैं, परंतु जब खून में शुगर थोड़ी सी भी कम होती है तो भी उनके सामने समस्याएं होने लगती है और व्यक्ति बेहोश हो सकता है, यहां तक कि तुरंत अगर उसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा गया है वह खून में शुगर का कम हो जाना और उसके चिन्ह क्या है वह हर डायबिटीज के मरीज को समझ लेने चाहिए अच्छी तरह से, और साथ साथ ऐसे भी कोई उपाय करने चाहिए ताकि कभी ऐसी परिस्थिति आए और खून में शुगर कम हो जाए तो तुरंत वह स्वयं उसका कोई उपाय कर सके। सबसे पहले तो हम इस बात की चर्चा करें कि जब खून में शुगर आवश्यकता से कम होती है तो क्या चिन्ह हो सकते हैं। मैं आपको आम रूप से होने वाले जो चिन्ह हैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। सबसे पहले व्यक्ति को जोरों से भूख लगती है और भूख लगने के बावजूद भी अगर वह खाना नहीं खाता है तो उसे पसीना पसीना हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिख सकता है, सरदर्द होने की संभावना है, हृदय की गति बढ़ सकती है या तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें जो संभव है कि हर मरीज में एक जैसी ना हो, आपको यह जान लेना चाहिए कि जब मेरे खून में ब्लड शुगर कम होती है तब मुझे क्या समस्या आती है। एक बार आप अपनी समस्या को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो जब भी खून में शुगर कम होने लगेगी तो आपको पता हो जाएगा। इसके लिए करना चाहिए कि एक बार जब आप घर में ही है कुछ घंटे भर न खाएं, और 8 घंटे 10 घंटे जब आप कुछ नहीं खाएंगे और खून में शुगर कम होने लगेंगी तो वह क्या चिन्ह आपको निर्माण होते हैं उससे पता चल जाएगा, और जब भी ऐसी समस्या भविष्य में आए तो तुरंत उसका हमें इलाज कर लेना चाहिए। अब एक बार आपको यह बात समझ में आ गई कि मेरे खून में शुगर कम होने से यह बातें होती है, तो सबसे जो जरूरी कदम हर व्यक्ति को उठाना चाहिए वह यह है कि अपने साथ या तो ग्लूकोज का पाउडर साथ में जरूर रखे, कुछ पुड़िया में जहां भी आप जाते हैं ग्लूकोज का पाउडर साथ में अवश्य रखे। शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बड़ी समस्या नहीं होगी, परंतु अगर खाने की कोई चीज आपके पास नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस बात में लापरवाही न रखें और ग्लूकोज का पाउडर या दूसरी बात कि कोई चॉकलेट्स की जो शुगर की ही बनी हुई है ऐसी चॉकलेट्स को आप अपने पास रखिए, भले उसे खानी नहीं है। देखा भी गया है कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर आप ऐसी राय दे रहे हैं कि पेशेंट्स चॉकलेट्स अपने पास रखे तो कभी भी वह खा लेंगे, परंतु बच्चे भी इसे नहीं खाते हैं। जब बच्चों को समझाया जाता है कि यह शुगर तो वास्तव में आपके लिए बहुत हानिकारक है, परंतु जब भी ब्लड शुगर काफी कम हो जाती है आपको बहुत समस्या होने लगती है तब आप तुरंत ही इस चॉकलेट को चबा लीजिए ताकि खून में शुगर सामान्य हो जाए और समस्या के साथ आप व्यवस्थित रूप से उसका सामना कर सके। साथ ही साथ एक बात आवश्यक है कि हर डायबिटीज के मरीज को अपने पास कोई एक ऐसा कार्ड रखना चाहिए कि जिसमें यह लिखा हुआ हो कि मुझे डायबिटीज है, और आपका एड्रेस, फोन नंबर और जो आवश्यक सूचनाएं जैसे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है वह भी उसमें लिखा हुआ हो, क्योंकि अचानक अगर आपके सामने समस्या आई, पहले प्रवचन में भी हमने देखा था कि उस प्रोफेसर की मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले किसी भी प्रोफेसर को यह पता नहीं था कि इनको डायबिटीज है, और करीब आधे एक घंटे तक अलग अलग डॉक्टर्स इलाज करने की कोशिश करते रहे और उसमें वह बहुत ही बड़ी समस्या आ गई। अगर प्रोफेसर्स को पता होता तो तुरंत ही उसका इलाज हो सकता है। ऐसे मरीजों को कहा जाता है तो अच्छा तो यह है कि इंट्राविनस ग्लूकोज दिया जाए, या तो अगर वह थोड़ी सी भी होश में हो तो उन्हें ग्लूकोज का पानी भी अगर पिला दिया जाए तो भी उनकी ब्लड शुगर है वह फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो यह था हाइपोग्लाइसेमिया होने से जो होने वाली समस्याएं हैं उसके साथ कैसे निपटा जाए। डायबिटीज में सर के बाल से लेकर के पैर की उंगलियों तक प्रत्येक हिस्से पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये बुरा प्रभाव पड़ने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह कारण है कि खून में शुगर बढ़ने से खून में इस प्रकार के तत्व जमा होने लगते हैं कि जो खून का भ्रमण ठीक से होने नहीं देते हैं। खून की जो नलिकाएं हैं वो छोटी होने वाले जो तत्व है वो सारे बढ़ जाते हैं, और खून की नलिकाओं को रिलैक्स करने वाले, खून का भ्रमण ठीक प्रकार से करने वाले जो तत्व है, वह तत्व सारे कम होने लगते हैं। और साथ ही साथ खून की नलिकाओं में चर्बी भी जमा होने लगती है। आमतौर पर खून की नलिकाएं रबर जैसी होती है ताकि ठीक प्रकार से वह खून को पहुंचा सकती है, परंतु डायबिटीज के मरीजों में कुछ समय के बाद वह प्लास्टिक जैसी हो जाती है और इसके कारण भी जो बहुत ही सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनमें खून ठीक प्रकार से बहता नहीं है। यहां तक कि खून की नलिकाओं में कैल्शियम भी जमा हो सकता है और इसके कारण भी बहुत बड़ी समस्याएं होती है। और साथ ही साथ जब मस्तिष्क को ठीक से खून नहीं मिलता है और मस्तिष्क को ठीक से खून न मिलने के कारण मस्तिष्क में भी खराबी निर्माण होने लगती है, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। और विशेष रूप से कहते हैं कि जो लंबे ज्ञान तंतु है, हाथ की उंगलियों को, पैर के पंजों को पहुंचाने वाले जो ज्ञान तंतु है, उनके ऊपर इसका बुरा असर होता है और वह ठीक से काम नहीं करते हैं। और विशेष रूप से हर नर्व्स में, इन ज्ञान तंतुओं में से इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी को मस्तिष्क से शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाते हैं, परंतु यह इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने की जो उनकी गति है वह गति धीमी हो जाती है। साथ साथ वह ठीक प्रकार से वह इलेक्ट्रिसिटी के मैसेज को पहुंचा भी नहीं पाते, इससे भी और समस्याएं खड़ी होती है। इन दोनों बातों को लेकर के शरीर के प्रत्येक अंगों पर बुरा असर होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें। एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, कि आंखें कुदरत ने एक बहुत ही आश्चर्यकारक रूप से बनाई है। उसमें ऐसी कार्यवाही है कि जो वास्तव में लगता है कि एक सबसे बड़े साइंटिस्ट ने शायद इसका निर्माण किया हो। और आंखों के पीछे जो पर्दा है उसे ठीक प्रकार से खून नहीं पहुंचता है, या तो उसमें खून रुक जाता है, साथ साथ कहीं कहीं वह जो सूक्ष्म नलिकाएं वह बीच बीच में फूल जाती है, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं। यह फूल जाने से भी समस्या होती है और इसे न्यूरोपैथी कहा गया है। आमतौर पर जो न्यूरोपैथी है उसमें मरीज को कोई समस्या नहीं होती, वह ठीक प्रकार से देख पाता है, इसलिए मरीज तो यही समझता है कि भी मुझे कोई चेकअप कराने की आवश्यकता नहीं। परंतु हर डायबिटीज के मरीज को साल में एक बार कम से कम विशेष इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आंखों के डॉक्टर, जिसे ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, वो ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा जब आंखों के पर्दे की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्या कहीं पर यह रेटिनोपैथी हो रही है, नलिकाएं फूलने लगी है या ठीक से उसमें खून नहीं बह पाता है। और अगर पहले ही पता चल जाए तो उसका सही प्रकार से इलाज हो सकता है। साथ साथ आगे चल के जिसे प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी कहते हैं कि यही समस्या और ज्यादा बढ़ती है, कहीं कहीं सूक्ष्म मात्रा में खून भी बहने लगता है और उसके कारण भी समस्याएं खड़ी हो सकती है। और अगर यह प्रोलिफरेटिव जो रेटिनोपैथी है उसका भी हम इलाज न करें तो आगे चल के उससे ज्यादा मात्रा में भी खून बह सकता है, कहीं कहीं पस भी निर्माण हो सकता है कि जिसे मैक्युलोपैथी कहते हैं। यहां तक कि मैक्युलोपैथी में भी व्यक्ति ठीक से देख पाता है, उसे लगता है कि मैं देख रहा हूं, सिर्फ एक विशेष प्रकार की टेस्ट है जो एक छोटे से छिद्र के द्वारा, पिन होल के द्वारा जब उसे देखने के लिए कहते हैं तब उसे ठीक से दिखाई नहीं दे पाता है और इससे पता चलता है कि इसे मैक्युलोपैथी होने की संभावना है। और जब पूरी जांच की जाए तो यह पकड़ में आ सकती है। इसलिए नियमित चेकअप एक तो जरूरी है और यह आंखों की समस्या इसी है। सबसे पहले तो हमें डायबिटीज को कंट्रोल में ही रखना चाहिए, या तो ऐसी जीवन प्रणाली को हम अपनाएं कि डायबिटीज हमें हो ही नहीं, क्योंकि आंखों की समस्याओं में देखा गया है कि एक किस्से में मरीज ने आंखों के स्पेशलिस्ट से चेकिंग कराई और स्पेशलिस्ट ने भी कहा कि तुम्हारे आंखों का पर्दा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोई समस्या नहीं है, परंतु जब तक वह क्लिनिक से नीचे उतरने लगा तो 3-4 मिनट में ही उसे एक आंख से दिखना बंद हो गया। तो इतनी जल्द यह समस्या निर्माण हो सकती है। और जो विकसित देश है, विकसित देशों में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण वह डायबिटीज है। और अगर डायबिटीज को ठीक से नियंत्रण में रखा जाए तो करीब 33% ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है। डायबिटीज में मोतीबिंदु कैटरेक्ट होने की संभावना भी करीब 3 गुना से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जिन बच्चों को भी डायबिटीज है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, या बच्चों में होने वाला टाइप 1 डायबिटीज में भी थोड़े ही करीब 4-5 सप्ताह में भी बच्चे को कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह है कुछ आंखों की समस्याएं हैं। साथ साथ डायबिटीज के मरीजों को हृदय की समस्याएं भी ज्यादा होती है, क्योंकि जब खून की नलिकाओं पर असर होता है तो हृदय पर उसका सबसे पहला परिणाम देखा जाता है। करीब 40-50% जो डायबिटीज के मरीज है उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। और साथ ही साथ एक जो विशेष बात है डायबिटीज के मरीजों में, कि जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहा गया है, कि बैठ करके अगर उनका ब्लड प्रेशर लिया जाए और फिर उन्हें खड़ा कर दे और फिर उनका फिर से ब्लड प्रेशर मापा जाए तो करीब 30 पॉइंट्स ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और ये पोस्चरल हाइपरटेंशन भी डायबिटीज के मरीजों में बहुत ज्यादा देखा गया है। साथ ही साथ क्योंकि खून की नलिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं, उनमें लकवा होने की संभावना, स्ट्रोक्स की संभावना है, वह भी बहुत ही ज्यादा है। और पैरों में देखेंगे तो खून की नलिकाएं हैं वो फूल गई होती है और उस अनुसार वह बाहर दिखाई भी दे सकती है। तो यह है कुछ हृदय को होने वाली समस्या। साथ साथ हमारी पाचन क्रिया पर भी इनका असर होता है। पाचन क्रिया ठीक प्रकार से हो नहीं पाती है, या तो इन मरीजों को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, दस्त ठीक से हो नहीं पाता है, या तो इन्हें डायरिया भी हो सकता है। और यहां तक कि डायबिटीज अगर लंबे समय तक है तो जब भी लेट्रिन करने की इच्छा होती है तब उसे आमतौर पर हम रोक सकते हैं अगर आवश्यकता हो, परंतु कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स इसे रोक भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनका वह जो कंट्रोल है वह कंट्रोल खत्म हो गया होता है। डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन, या तो डायबिटीज के कारण शायद सबसे ज्यादा हानिकारक असर होती हो, तो वह होती है हमारी किडनी पर। डायबिटीज और किडनी की दुश्मनी है। तो इसलिए किडनी पर क्यों असर होती है, क्योंकि फिर से खून की नलिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती, किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है शुगर को बाहर फेंकने के लिए। और साथ ही साथ जिसे फ्री रेडिकल्स कहा गया है, इस शरीर में ये प्रक्रिया होती ही रहती है। आमतौर पर हम जानते हैं कि अगर एप्पल को हम काट दे और थोड़ा समय रखे तो क्या होता है, एप्पल लाल लाल ब्राउन होने लगता है। तो वह क्यों, क्योंकि उसे जो फ्री रेडिकल्स निर्माण होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो है वह पागल जैसे होते हैं, वो यहां वहां तोड़ फोड़ करते हैं। लोहे को भी क्यों जंक लगती है, क्योंकि उससे फ्री रेडिकल्स निर्माण होते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर से भी फ्री रेडिकल्स निर्माण होते रहते हैं, परंतु अगर उसको ठीक प्रकार से कंट्रोल किया जाए, ऐसे तत्व हमारे शरीर में हो कि जो उसके साथ मिल जाए और उसका जो पागलपन है उसे काबू में ला दे। परंतु डायबिटीज में ये बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स निर्माण होते हैं, इसलिए भी किडनी पर डैमेज है वह बढ़ता जाता है। और किडनी का जो डैमेज है वो शुरुआत भी किडनी के डैमेज की हुई हो, डायबिटीज होने के 5 साल या 7 साल के बाद जब होने की शुरुआत होती है, तो एक टेस्ट है जिसको कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन। पेशाब में माइक्रो एल्ब्यूमिन को टेस्ट किया जाए तो तुरंत पता चल सकता है कि किडनी का डैमेज है वो शुरू हो गया है, और उसके लिए हमें कुछ सही कदम है वह उठाने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो डायबिटीज के मरीज को है वह है पैरों की समस्या, क्योंकि आम तौर पर हम खड़े रहते हैं, और जब हम आम तौर पर खड़े रहते हैं तो पैरों को ठीक प्रकार से खून नहीं पहुंचता है। और डायबिटीज में खून की नलिकाओं पर असर होने से भी उसे ठीक से खून नहीं पहुंचता है, इसलिए बहुत समस्याएं खड़ी हो सकती है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं डायबिटीज के मरीज में देखा गया है कि पैरों में जो एक आर्च है, पैरों में जो एक वो कर्व होता है, वह कर्व बहुत ज्यादा हो सकता है। साथ साथ जो पैर की उंगलियां हैं, वह पैर की उंगलियां और एडी की मूवमेंट, उसको ठीक प्रकार से चलने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया में भी हानि हो सकती है। ऐसे भी किस्से देखे हैं कि थोड़ा सा भी अल्सर हुआ हो, छोटा सा भी अल्सर हुआ हो, परंतु वह अल्सर काफी फैल सकता है। एक किस्से में अल्सर छोटा सा ही था, परंतु जब उसे खोला गया तो देखा कि सारे पैर में वह अल्सर फैला हुआ था, पस फैला हुआ था। और एक बार एक प्रवचन में जब यह चित्र भी दिखाया गया तो देखने वाले लोगों में से भी एक व्यक्ति को फीट आ गई। उसके दिल में हुआ कि अरे, इतनी बड़ी समस्या डायबिटीज में हो सकती है, भले मैं दिखाई छोटा देता है। कई बार भल छोटा सा अल्सर है, परंतु जब अंदर से देखा जाए तो पैरों में कई जगह पर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ अंगूठे का सड़ना भी शुरू हो सकता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। एक तो गीला गैंग्रीन है कि जिसके अंदर पस आदि भी होता है, और दूसरा सूखा गैंग्रीन है कि जो सिर्फ काला सा ही रहता है। और ऐसे भी किस्से देखे गए हैं कि वह सूखे गैंग्रीन को सही प्रकार से रखा गया तो करीब 10-12 मास के बाद ऑटोमेटिक वह पैर से अलग हो गया, उसके लिए उंगली को कटवानी नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से ऐसे ड्राई गैंग्रीन भी हो सकता है, और जो अल्सर होते हैं वो अल्सर ठीक नहीं होते हैं। ये जो आप किस्सा देख रहे हैं कि जिसमें वो अल्सर करीब 12 मास तक रहा, कि जब 12 मास तक उसकी संभाल करते गए तो भी वह अल्सर हील नहीं हुआ, अंत में मरीज का हार्ट अटैक से और कोई कारण से देहांत हो गया। साथ साथ पैरों में क्योंकि उन्हें सेंसेशन नहीं होते हैं, इसके कारण जलने की भी संभावना बहुत ज्यादा है कि कहीं पर गर्म चीज है उस पर पैर लग जाए और वह सारा पैर जल जाए, परंतु व्यक्ति को पता नहीं चलता है। इसलिए गर्म पानी से स्नान करते समय भी ये कहते हैं कि डायबिटीज के मरीज को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपना ही हाथ पानी में डाल करके उन्हें पता नहीं चलेगा कि पानी गर्म है या नहीं, और कोई व्यक्ति चेक करे कि पानी कितना गर्म है। या तो कहते कि इस प्रकार से हाथ को मोड़ करके आप पानी में डालिए ताकि एल्बो में जो सेंसेशन है वह अधिकतर रहते हैं, जो सेंसेशन की लॉस होती है। जैसे कहते हैं कि पैरों में अगर आपने ग्लव्स पहने हैं, आपने ग्लव्स पहने हैं और पैरों में सॉक्स पहने हैं, तो जितना हिस्सा है उतने हिस्से में सेंसेशन लॉस होते हैं, और पैरों में पहले सेंसेशन लॉस हो जाते हैं और हाथों के सेंसेशन है वो आगे चल करके लॉस होते हैं। पैरों में आपको गर्म की भी महसूसता हो सकती है, या कोई चीज काट रही है इस प्रकार की भी महसूसता पैरों में हो सकती है। कहीं ऐसे भी मरीज है कि जो चलते चलते उनके चप्पल निकल जाते हैं, परंतु काफी आगे चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि अरे, मेरे पैरों के चप्पल निकल गए। तो यह थी कुछ एक डायबिटीज जब हम नियंत्रण में नहीं रखते हैं, और जैसे जैसे डायबिटीज आगे बढ़ता जाता है तो उस समय होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या समस्याएं। ओम शांति। ओम शांति। डायबिटीज का मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तब उसे विशेष रूप से दो बातें करने के लिए कहा जाता है। एक तो कि वह अपने शूज और सॉक्स उतार दे ताकि उसके पैरों की जांच की जाए। अगर पैरों में कोई तकलीफ होगी और उसकी जांच न हो तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीज अपना चेहरा नहीं धोएंगे तो कोई बात नहीं, परंतु पैरों को जरूर धोने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी बात है। डायबिटीज में फेस वैल्यू से ज्यादा फुट वैल्यू को महत्व दिया जाता है, क्योंकि डायबिटीज में धीरे धीरे पैरों के जॉइंट्स भी खराब होने लगते हैं, उसमें नई हड्डियां भी कहीं कहीं डेवलप होने लगती है, साथ साथ में जो जॉइंट्स है उसमें खराबी होने के कारण से भी समस्या होती है, जिसे चारकोट जॉइंट कहा जाता है। साथ साथ डायबिटीज के मरीजों में पैरों के आगे के हिस्से में भी वहां पर कहीं कहीं पिगमेंट्स हो जाते हैं और वो जैसे चमकदार स्किन बन जाती है, और यह भी एक विशेष बात है जो डायबिटीज में पाई गई है। डायबिटीज के मरीजों में अधिकतर मस्तिष्क के जो नर्व्स है वह सभी नर्व्स पर असर होता है, और विशेष रूप पे फेशियल पाल्सी, चेहरे के जो नर्व्स है उस पर असर होती है, जो इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं कि हर डायबिटीज के मरीज को हाथ जोड़ने के लिए कहा जाए, प्रार्थना करने के लिए कहा जाए, क्योंकि डायबिटीज में जब हाथों के जॉइंट्स पर असर होती है तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि व्यक्ति ठीक से हाथ जोड़ नहीं पाता है, और वह भी एक महत्वपूर्ण निशानी है कि उसके जॉइंट्स है उस पर बुरी असर होने लगी है। डायबिटीज में पैरों की संभाल कैसे करें, कुछ बातें डायबिटीज के मरीज को प्रतिदिन करनी चाहिए। सबसे पहले कॉटन के सॉक्स पहने, क्योंकि टेरिकॉट के सॉक्स पहनेंगे तो वह पसीने को ठीक प्रकार से चूस नहीं लेगा और उसके कारण भी दिक्कत होगी, और जहां भी जाते हैं आप सॉक्स पहने रखें, यहां तक कि मंदिर में भी जाना हो तो भी सॉक्स को पहने रखें, क्योंकि अधिकतर मंदिरों में मार्बल्स होते हैं और अगर मार्बल्स गर्म हो गए हैं, आपने सॉक्स नहीं पहने हैं तो आपको पता नहीं चलेगा और हो सकता है कि पैरों में जलने की समस्या भी निर्माण हो सकती है। साथ ही साथ डायबिटीज के मरीज को दिन में दो बार जरूर पैर धोने चाहिए, और साबुन और पानी से जब पैर धोते हैं तो तब उसे ठीक प्रकार से साफ भी कर ले, विशेष रूप से उंगलियों के बीच में पैरों को ठीक से साफ करने चाहिए। पैरों में कोल्ड क्रीम भी लगा सकते हैं, सिर्फ यह ध्यान रहे कि पैरों की उंगलियों के बीच में कोल्ड क्रीम न लगाए, नहीं तो वहां पर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। नाखूनों को जब काटते हैं तो उस समय भी अधिकतर व्यक्ति कोशिश करता है कि नाखूनों को अच्छी तरह से पूरे गोलाकार में काटे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उसे गोलाकार में काटने की कोशिश करते हैं तो तब चमड़ी भी कट सकती है और वहां पर पस होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जब नाखूनों को काटते हैं तो उसे सीधा काटने की कोशिश करनी चाहिए, और थोड़े से ऊपर रह जाए तो भी अच्छा है। इसी प्रकार से डायबिटीज के मरीजों को अपने पैरों की जांच प्रतिदिन करनी चाहिए। कहते हैं कि आप चेहरा आईने में नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, परंतु पैरों को जरूर देखिए, क्योंकि पैरों में कहीं पर रंग में बदलाव आया है या तो छोटी सी भी चोट लगी है तो उसे भी देखना चाहिए। साथ साथ डायबिटीज के मरीजों को शूज को पसंद करते समय भी बड़ी सावधानी रखनी आवश्यक है, क्योंकि अगर शूज अधिक टाइट होंगे तो भी समस्या हो सकती है, शूज में कहीं पर भी कुछ खराबी हुई है तो भी पैरों में चोट आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और डायबिटीज के मरीजों को वेलक्रो के सैंडल पसंद करना बहुत ही अच्छा है, कि जिसमें एयर को, हवा को आने की मार्जिन भी हो, और साथ साथ उसे अगर आवश्यकता हो तो थोड़े अधिक टाइट किए जा सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है तो उसे हम लूज भी कर सकते हैं। ऐसे वेलक्रो के सैंडल्स की जो ठीक प्रकार से पैरों के साइज के ही हो, ऐसे सैंडल पसंद करना बहुत ही अच्छा है, और प्रतिदिन सैंडल की भी जांच करनी चाहिए कि कहां पर वह टूटा हुआ है या तो खील बाहर निकल आई है, तो इस प्रकार के सैंडल्स नहीं पहनने चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को कुछ एक्सरसाइज पर भी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से पैरों की एक्सरसाइज। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूं कि जो डायबिटीज के मरीज को प्रतिदिन कम से कम 5 बार करनी चाहिए। एक तो पैर के पंजे को उठा करके पैर के पंजे को ऊपर नीचे करना, फिर दूसरे पैर के पंजे को उठा करके उसे भी ऊपर नीचे 5 बार करना। दूसरी एक्सरसाइज कि सारे पैर के पंजे को घड़ी जैसे रोटेट करती है ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना, फिर सारे पैर के पंजे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे ही दूसरे पैर से 5 बार उसे क्लॉकवाइज घुमाना, फिर 5 बार उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। साथ ही साथ सीढ़ी पर या और ऐसे कोई ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जहां पर दूसरा पैर फ्री रह सके, एक पैर को जितना फ्रीली हम घुमाएं उतना उस पैर को एक्सरसाइज मिलेगी। साथ साथ अब उल्टा हो करके कि दूसरा पैर सीढ़ी पर हो और लेफ्ट पैर को जितना हो सके उतना फ्रीली घुमाए कि जिससे वहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा। सीधा खड़े होकर के सिर्फ घुटनों को मोड़े, जितना हो सके उतना कमर को सीधी रखनी है, सिर्फ घुटनों को मोड़े और फिर से सीधे हो जाए। इस प्रकार से यह क्रिया भी है वह करीब 5 बार करे कि जो भी मदद करेगी। सारे पैर को भी जितना हो सके उतना क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, सारे पैर को जितना हो सके घुमाने की कोशिश करे, दूसरे पैर को भी जितना हो सके उतना घुमाने की कोशिश करे। सिटअप्स भी कर सकते हैं कि घुटनों के बल पर बैठ जाए और फिर से खड़े हो। तो इतनी एक्सरसाइजेस करीब कम से कम 5 बार रोज करनी चाहिए कि जिससे पैरों का खून का भ्रमण ठीक से हो और पैरों को कोई तकलीफ ना हो। तो यह हुई पैरों की संभाल डायबिटीज में। अब हम विशेष रूप से भी एक्सरसाइज के बारे में कुछ चर्चा करें कि डायबिटीज के लिए एक्सरसाइज क्यों महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज करने से जो खून में शुगर बढ़ी है वो खून में शुगर को कम होने में एक्सरसाइज अपने आप में भी मदद करती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब शक्ति की आवश्यकता होती है और वह शक्ति ग्लूकोज से मिलेगी, इसलिए अधिक ग्लूकोज है जो शरीर के अंगों में कोशिकाओं में प्रवेश कर सकती है। साथ साथ एक्सरसाइज से जो खून में चर्बी है वह कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है। एक्सरसाइज कमाल की चीज है कि खून में 2 प्रकार की चर्बी है, एक है अच्छी चर्बी जिसे HDL कहते हैं और दूसरी है बुरी चर्बी जिसे LDL कहते हैं। HDL अर्थात हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL अर्थात लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वास्तव में HDL अधिक होना चाहिए और LDL कम होना चाहिए। और सचमुच जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब HDL बढ़ता है और LDL कम होता जाता है। ऐसे ही और भी करीब शरीर में 15 परिवर्तन आते हैं व्यायाम करते समय, और वो सारे के सारे 15 परिवर्तन स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वह कम होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो वह बढ़ता है। इसलिए संतुलन की क्रिया एक्सरसाइज के दौरान होती है। इस प्रकार ही हृदय की जो गति है वह हृदय की गति भल शुरू में बढ़ती है एक्सरसाइज करते समय, परंतु नियमित एक्सरसाइज करे तो हृदय की गति वह कम होती है और नॉर्मल लेवल पर हमेशा के लिए रह सकती है। इस प्रकार ही एक्सरसाइज करते समय मस्तिष्क में भी इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं कि जो हमारी मन की स्थिति को संतुलित रखने में मदद करते हैं, निराशा को दूर करने में मदद करते हैं। कहते हैं कि आम मानव परिस्थिति का दास होता है, छोटी छोटी बातों में उदास होता है। जो हर परिस्थिति में मन का संतुलन बना ले, उसी के नाम अमर इतिहास होता है। और सचमुच प्रतिदिन व्यायाम करने से, क्योंकि मन की स्थिति भी अच्छी बनती है, निराशा दूर होती है, इसलिए मन का संतुलन रखने में भी प्रतिदिन व्यायाम हमें मदद करता है। इन सभी फायदों को जानने के बाद थोड़ा सा हम यह समझे कि कैसे एक्सरसाइज करें। विनोबा भावे के पास कुछ नौजवान आए। विनोबा भावे ने उन्हें कहा कि कुल्हाड़ी लेकर के आप थोड़ा सा यह कार्य करके आइए। करीब 5 मिनट में वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि विनोबा जी, हमने बहुत एक्सरसाइज की, देखो हमारे हाथ में छाले पड़ गए। विनोबा जी ने कहा कि ये छाले इसलिए नहीं पड़े हैं कि तुमने बहुत शारीरिक कार्य किया, परंतु ये छाले इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुम प्रतिदिन कोई शारीरिक कष्टदायक कार्य नहीं करते हो। अगर तुम नियमित करते होते तो 5 मिनट में इस प्रकार से हाथ में छाले नहीं पड़ते। और एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि जो हमारे शरीर के रिसेप्टर्स की, जो रिसेप्टर्स कार्य नहीं करने के कारण खून में ज्यादा इंसुलिन होते हुए भी वह ब्लड शुगर को कम नहीं करता है, वह रिसेप्टर्स भी ठीक प्रकार से कार्य करने लगते हैं। अब एक्सरसाइज के बारे में हमें यह जानना चाहिए कि एक्सरसाइज कब, कहां और कैसे करें। सबसे अच्छा समय है कि सुबह कोमल धूप में अगर एक्सरसाइज की जाए तो उस समय वातावरण में ठीक प्रकार से ऑक्सीजन भी होता है और साथ साथ में जो सूर्य की कोमल किरणें हैं वह चमड़ी में विटामिन डी का निर्माण करने में भी मदद करती है। इसलिए हमें 2 गुना फायदा हो सकता है। सिर्फ भोजन करने के करीब 3 घंटे तक एक्सरसाइज न करें, भोजन से पहले 1 घंटे पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और शाम को 6 बजे के बाद व्यायाम न करें, क्योंकि उसके बाद व्यायाम करने से शरीर में उत्तेजना आती है और रात्रि को सोते समय व्यक्ति को कुछ तकलीफ हो सकती है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज के हम 3 स्टेजेस को समझे कि कोई भी हम व्यायाम करते हैं तो वह हम 3 स्थिति से गुजरते हैं। पहली स्थिति है जिसे कहते हैं वार्मिंग अप, कि शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करना। दूसरी स्थिति है कि एक्सरसाइज करना, और तीसरी स्थिति है कूलिंग डाउन, अर्थात कि शरीर को फिर से उस स्थिति में लाना कि जो पहले वाली अवस्था थी। वार्मिंग अप के लिए हम पहले धीरे धीरे पैदल करना शुरू कर सकते हैं, और डायबिटीज में सीढ़ी चढ़े या तो कोई ऊंचे लेवल पर जाने के बदले अच्छा है कि जमीन पर ही, जहां पर एक जैसा लेवल है उस जमीन पर अगर पैदल करे तो वह सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग को क्वीन ऑफ एक्सरसाइज कहा गया है कि जिसमें करीब करीब शरीर के सभी अंगों को एक्सरसाइज मिल जाती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो और एक ध्यान देने योग्य बात है कि समय को जरूर देखें, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, इसलिए जब हम थोड़ा टाइम भी एक्सरसाइज करते हैं हमें लंबा समय लगता है। एक मरीज को जब मैंने कहा कि तुम यहां पर डायबिटीज शिविर में आते हो तो तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो कहते हैं साहब मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूं, घर से यहां तक चल के आता हूं। वास्तव में मुझे पता था कि उसका घर तो 5 मिनट की दूरी में था, वो 5 मिनट में यहां पहुंच जाता होगा। तो इसलिए हमें यह पता नहीं होता है कि सचमुच कितना समय हमने व्यायाम किया, और कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। घर का हम थोड़ा थोड़ा 4-5 मिनट काम करते हैं तो एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता, परंतु जब हम करीब 20 मिनट तक एक्सरसाइज करते और ऐसे कि जब सांस की गति कुछ हद तक बढ़ी हुई हो। उसके अलग अलग फॉर्मूलाज भी है कि 200 में से आपके शरीर का जो वजन है उसको आप कम कर दीजिए तो जो नंबर आता है, उदाहरण के रूप में आपका वेट 70 किलो है तो अगर 70 को आप 200 से कम करेंगे तो 130 होगा, और उसके करीब 80% या तो 110 जितनी अगर आप हार्ट रेट को बढ़ाते हैं तो वह टारगेट हार्ट रेट है। और साथ साथ दूसरी भी एक फॉर्मूला है कि जिससे हम मैक्सिमम हार्ट रेट की गिनती कर सकते हैं कि अधिक से अधिक कितनी हो। 220 में से आपकी उम्र को कम कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो 220 में से 40 कम करेंगे तो 180 होगा, तो मैक्सिमम आप अपनी हार्ट रेट को 180 तक ले जा सकते हैं। वह थोड़ी देर ठीक है, आमतौर पर जो टारगेट हार्ट रेट है जो 110 120 तक होती है वहां तक हम उसे ले जाए और उसी स्थिति को कायम रखे करीब 20 मिनट तक, तो जो सबसे अच्छा फायदा एक्सरसाइज का होना चाहिए वह हो सकता है। और डायबिटीज के मरीज जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप प्रतिदिन 5-10 मिनट भी नहीं चलते हैं तो तुरंत यह प्रवचन सुन करके अगर आप 20-25 मिनट चलना शुरू कर देंगे तो ब्लड शुगर कम होने के बदले हो सकता है कि बढ़ जाएगी। इसलिए पहले ही दिन बहुत ज्यादा व्यायाम न करें परंतु दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। अगर आप 10 मिनट करते हैं आप 15 मिनट करिए, फिर 20 मिनट तक आइए। शुरू में भले चलने की गति थोड़ी सी ही तेज हो फिर धीरे धीरे उस गति को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक्सरसाइज को बढ़ाते जाते हैं तो सबसे अच्छे एक्सरसाइज के फायदे हो सकते हैं। और पैदल करने के अलावा सारे शरीर को भी, पैर की उंगली से लेकर के सर तक, सभी अंगों को एक्सरसाइज मिले, इस प्रकार की भी कुछ क्रियाएं करीब 3 बार या 4 बार करनी चाहिए ताकि सारा शरीर है वह स्वस्थ और स्फूर्तीला रह सके। मैंने आपको पैरों की एक्सरसाइज तो सबसे पहले बताई है, अब और भी कुछ हम सिंपल से स्टेप देखते हैं कि जिससे और अंगों को भी एक्सरसाइज मिल सकती है। और एक अच्छी क्रिया है पैर को मोड़ करके सीधा करे, पूरा मोड़े और उसे सीधा करे, इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी उसे मोड़ करके सीधा करे, पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रख करके एक और मुड़ जाए, फिर पैरों के बीच में अंतर रख करके दूसरी ओर मुड़े, यह क्रिया भी करीब 3 बार कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीधे खड़े होकर के हाथ को सामने रखकर मुड़ने की कोशिश करें और पैर की उंगलियों को स्पर्श करने की कोशिश करें, फिर से सीधे हो जाए, इस क्रिया को भी करीब कम से कम 3 बार करनी चाहिए। ऐसे ही कमर पर हाथ रख करके पीछे मुड़ने की कोशिश करें कि ताकि कमर के स्नायुओं को एक्सरसाइज मिलेगी। इसी प्रकार से हाथों को सीधा रखें और पूरा हाथों को मोड़ने की कोशिश करें, ऐसे फिर से उसे उसी पोजीशन में ले आए, दूसरी ओर मोड़े, दूसरी ओर मोड़ करके भी उसे वापस उसी पोजीशन में लाए, ऐसे ही हाथ को इस प्रकार सीधा रख करके ऊपर की ओर ले जाए और उसे स्पर्श करने की कोशिश करें, या तो थोड़ा सा अंतर रहे, अगर हाथों के बीच में प्रकंपन फील होते हैं तो उसे भी फील होने दे, उसे फील करने की कोशिश करें। ऐसे ही हाथों की और एक्सरसाइजेज में मुट्ठी को बंद करके उसे मोड़े, एक दिशा में पहले रोटेट करें, फिर उसे दूसरी दिशा में रोटेट करें, ऐसे ही हाथ के पंजे को मोड़कर उसे फिर से सीधा ले जाए, हाथ के पंजे को मोड़ करके फिर से उसे सीधा ले जाए। ऐसे ही डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर भी बहुत ज्यादा पाया गया है, करीब आम लोगों से डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर 4 गुना होता है, इसलिए सारे हाथ को रोटेट करना भी, एक पूरा चक्कर लगाना, कहीं दीवार पर भी खड़े होकर के पूरा चक्कर लगाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे ही फिर उसे दूसरी दिशा में भी पूरा चक्कर लगाए, ऐसे ही फिर लेफ्ट हाथ से भी करे, पूरा एक चक्कर लगाए और फिर धीरे धीरे दूसरा चक्कर लगाए। गले की एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छी है कि दाढ़ी को छाती पर टच करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे उसे पीछे की ओर ले जाएं, ऐसे ही शोल्डर की ओर एक और मोड़े, साथ साथ दूसरी ओर भी उसे मोड़े, शोल्डर्स को एक शोल्डर को ऊपर ले जाएं, फिर उसे नीचे करें, शोल्डर को भी एक शोल्डर को ऊपर ले जाए फिर उसे नीचे करे, दूसरे शोल्डर को ऊपर ले जाए फिर से उसे नीचे करे, शोल्डर्स को पीछे लेने की भी कोशिश करे। ये सभी एक्सरसाइजेस तीन तीन बार करनी चाहिए। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं ऐसे गुब्बारा फुलाने की भी कोशिश करे, दांतों को दबाए, आंखों को भी स्क्वीज करें इस प्रकार से। ऐसे अगर इतने भी स्टेप्स हम करीब तीन बार से पांच बार करते हैं, करीब 20 मिनट वॉक करने के बाद, तो सारे शरीर के सभी अंगों को एक्सरसाइज मिल जाती है और धीरे धीरे वास्तव में इसे बढ़ाना भी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि एक आम व्यक्ति को भी करीब 8 किलोमीटर चलना चाहिए, अर्थात कि हम करीब 1.25 घंटा चले तो सामान्य स्पीड से हम 8 किलोमीटर तक चल सकते हैं। इसलिए कुछ समय के बाद ऐसा अभ्यास जरूर डालें कि सवेरे आधा घंटा और शाम के समय करीब 40 या 45 मिनट्स वॉकिंग, और उसके बाद जो सारे स्टेप्स बताए वह स्टेप्स किए जाए, तो बिना कोई खर्च हम स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और भले आपको डायबिटीज हुआ है, परंतु आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो और बीमारियां भी आपको कम होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकेगा। तो मैं समझता हूं कि प्रतिदिन कोई भी हम बहाना न बताएं, जैसे वह एडवोकेट की भी बात मैंने कही थी कि वह बारिश में भी छाता लेके भी पैदल करने जाते थे। ऐसे कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी है कि जिससे ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में हमें बहुत फायदे मिलते हैं। ओम शांति। डायबिटीज की अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो उसमें तीन बातें हैं। एक तो कई मरीजों को सिर्फ आहार पर नियंत्रण रखकर ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखा जा सकता है, और कुछ मरीज है कि जिनको आहार पर नियंत्रण रखना है और साथ साथ दवाइयां भी दी जाती है, मुंह से खाने वाली दवाइयां दी जाती है। और तीसरे थोड़े से ऐसे भी मरीज है कि जिनको डाइट प्लस इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो इन तीनों ट्रीटमेंट में कौन सी बात वह कॉमन है जो तीनों में आती है, वह है आहार। इसलिए डायबिटीज के मरीजों में आहार सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर हमें पूरी खुल करके चर्चा करनी चाहिए। आहार के मुख्य रूप से 6 घटक है, 6 उसके कंपोनेंट्स है। एक है कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमें रोटी, चावल, ऐसे ही ज्वार, बाजरा, मक्का की रोटी आदि से मिलते हैं। दूसरे है प्रोटीन की जो अलग अलग दालों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, दूध से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भल नॉन वेजिटेरियन आहार में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, परंतु उसकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं। तीसरा है चर्बी की, जो भी तेल, घी, साथ साथ दूध और इस प्रकार के अन्य पदार्थों में भी चर्बी है। चौथी बात है विटामिन्स, अलग अलग विटामिन्स है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई आदि की, जो हमें फलों से मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं, दूध आदि से भी मिलते हैं। और है अलग अलग मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे विभिन्न मिनरल्स है कि जो भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इस प्रकार के केमिकल्स है कि जो मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्री रेडिकल्स निर्माण होते रहते हैं, और यह फ्री रेडिकल्स की जो हानिकारक असर है, उस हानिकारक असर को रोकने के लिए यह एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करते हैं कि जो हमें अंकुरित गेहूं, मेथी, मूंग, चना आदि से बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। फलों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स है कि जो बहुत ही मदद रूप है। तो यह आहार की जो छह मुख्य बातें हैं, छह मुख्य कंपोनेंट्स है। अब एक एक पर हम विचार करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। जब हम सीधा ग्लूकोज या चीनी लेते हैं तो वह खून में भी तुरंत ही रक्त की शुगर को बढ़ा देता है, परंतु जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रोटी के रूप में, चावल के रूप में, तो वह धीरे धीरे खून में शुगर को बढ़ाता है कि जो वास्तव में आवश्यक है। और जितना हो सके उतना गेहूं का भी पूरा आटा हम लेते हैं। मैदा है वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, परंतु उसमें रेसे न होने के कारण, फाइबर बिल्कुल न होने के कारण वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और करीब हमें 55% जो हमारा आहार है वह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में भी ब्रेड के बदले आप रोटी लेंगे तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और दलिया भी, जिसको गेहूं की लापसी कहते हैं, कि दलिया भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम उसका पूरा आटा बना देते हैं तो कहीं सूक्ष्म मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए दलिया के रूप में भी अगर हम गेहूं को ले सके तो वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ प्रोटीन, प्रोटीन के विषय में कहीं गलत मान्यताएं हैं, कहीं समझते हैं कि हमें बहुत मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, वह तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, परंतु अनुसंधानों के द्वारा देखा गया है कि हमें करीब 10-15% ही प्रोटीन की आवश्यकता है। और प्रोटीन के जो मूलभूत घटक है अमाइनो एसिड्स, भल शाकाहारी अन्न में फर्स्ट क्लास अमाइनो एसिड्स कम है, परंतु वह सेकेंड क्लास अमाइनो एसिड्स भी आपस में मिल करके फर्स्ट क्लास जो अमाइनो एसिड्स है वह बन सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं, उल्टा डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा प्रोटीन हानिकारक है, क्योंकि डायबिटीज में सबसे ज्यादा असर वह किडनी पर होती है, और अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो किडनी पर विपरीत असर होगी और किडनी फेल भी धीरे धीरे हो सकती है। आज कई अनुसंधान हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि शाकाहारी अन्न वास्तव में स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और कई लोग कि जो पहले मांसाहारी थे परंतु यह अनुसंधानों को समझ करके ही वह धीरे धीरे शाकाहारी अन्न का सेवन करने लगे हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता है, परंतु थोड़ी सी ही मात्रा में आवश्यकता है। ऐसे ही तीसरा कंपोनेंट है चर्बी, चर्बी की भी हमें आवश्यकता है। अगर हम बिल्कुल नहीं लेंगे तो मस्तिष्क की रचना है वह चर्बी से ही हुई है, परंतु चर्बी की हमें अधिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना घी तेल का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। दूध को जब लेंगे तो उसमें आवश्यक मात्रा में फैट है वो हमें उपलब्ध होती है। और चर्बी का भी जब हम सेवन करते हैं तो ऑयल्स में हमें सैचुरेटेड फैट की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड फैट अर्थात कि जो घी तेल बाहर जब हम रखते हैं तब ठंडी में जम जाते हैं, वह शरीर में जाकर के भी खून की नलिकाओं में जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें अनसैचुरेटेड फैट की आवश्यकता है। अनसैचुरेटेड में भी दो प्रकार है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड चर्बी, तो उनकी हमें आवश्यकता है। परंतु किसी भी एक, इसका एक रेशियो चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड चर्बी का एक रेशियो आवश्यक होता है, परंतु किसी भी ऑयल में यह रेशियो ठीक नहीं है। इसलिए वास्तव में हमें रिफाइंड ऑयल अलग अलग प्रकार के लेने चाहिए, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, परंतु सबसे अच्छा तो यह है कि हम उसको बदलते जाएं। अगर एक मास आपने एक फिल्टर्ड ऑयल का यूज किया है तो दूसरा मास आप दूसरा फिल्टर्ड ऑयल यूज करिए कि जिससे वह रेशियो है वह करीब करीब एक जैसा हमें आवश्यक है वैसा रेशियो मिल सकता है। और चीजों को फ्राई कर करके न ले। जब हम आलू को बॉईल करके लेते हैं तो भी उसमें अधिक कैलोरी है, करीब 50 ग्राम में 50 कैलोरी है, परंतु जब हम उसे फ्राई करते हैं तो उसकी कैलोरी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसके कारण सिर्फ छौंक लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल जो यूज होता है उतना ही कम से कम हम ऑयल लें। या तो जब भी फ्राई करते हैं, समोसा बनाते हैं, बटाटा वड़ा बनाते हैं, उसे फ्राई करने से इतना अधिक ऑयल यूज होता है कि जो डायबिटीज के लिए सचमुच हानिकारक है। जितना हो सके उतने हमें ज्यादा विटामिन्स लेने चाहिए। और वह क्यों जरूरी है? शरीर को शक्ति चाहिए। और वह शक्ति कैसे आएगी? जैसे हम पहले के समय में जानते हैं कि लकड़ियां जला करके खाना बनाया जाता था। अगर किसी के घर में बहुत सारी लकड़ियां हो परंतु माचिस न हो तो क्या होगा? आग नहीं जलेगी और खाना नहीं बनेगा। अगर वह व्यक्ति रोज लकड़ियां लाता रहे परंतु माचिस न लाए तो उसके घर में कभी भी भोजन नहीं बनेगा। ऐसी ही स्थिति हमारे शरीर में भी होती है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन फैट लेते हैं, परंतु विटामिन्स का सेवन नहीं करते हैं तो वह माचिस का काम करता है और वो जो एनर्जी का निर्माण होना चाहिए वह एनर्जी का निर्माण नहीं होता है। वास्तव में जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब वह माँ के शरीर से ही इतने सारे विटामिन्स अपने शरीर में ले लेता है कि जो उसे करीब 20 साल तक चलते रहे। इसलिए बचपन में जब आवश्यक मात्रा में हम विटामिन्स नहीं लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, परंतु 20-25 वर्ष के बाद हमें कमजोरी आने लगती है। पता चलता है कि सचमुच जो शक्ति होनी चाहिए, ताजगी का अनुभव होना चाहिए, वह ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा है, शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये विटामिन्स बहुत ही जरूरी है कि जो हमें सब्जियों से मिलते हैं, फलों से मिलते हैं, तो उसका सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए। भले फलों में भी कैलोरी है परंतु और तत्व इतने अच्छे हैं कि जिसके कारण संतुलित रूप से फल भी लिए जाए तो वह बहुत ही अच्छा है। और फल कब लेने चाहिए? फलों को अगर आम तौर पर हम खाने के ऊपर फल खाते हैं, परंतु जब भी हम आम भोजन करते हैं तब हमारे पेट का जो नीचे का हिस्सा है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, कि ताकि आहार वहीं पर 1.5-2 घंटे तक रहे और उसका ठीक प्रकार से पचन हो। परंतु फलों का पचन करने के लिए इतने समय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1/2 घंटे की ही आवश्यकता होती है। तो अगर खाने के ऊपर हम फल खाएंगे तो वह वहीं पर 2-2.5 घंटा तक रहेंगे और वह सड़ने लगेंगे, उससे और जो विषैले तत्व है वह निर्माण होने लगेंगे। इसलिए फल खाने का सबसे अच्छा समय है कि नाश्ते के करीब 2-2.5 घंटे के बाद फल खाइए, ताकि वह तुरंत ही आधे एक घंटे में उसका पूरा पचन है वह हो जाता है और अधिक से अधिक मात्रा में अच्छे तत्व है वह खून में भी प्रवेश हो सकते हैं। ऐसे ही भोजन और रात्रि के भोजन के बीच में करीब 4:30-5 बजे भी फल खाइए कि जिससे वह भी पूरे पूरे उसके अच्छे तत्व है वह खून में मिल सके। और फल हमें खाने ही चाहिए, यह नहीं है कि डायबिटीज में फल नहीं खाने चाहिए सिर्फ कुछ फलों को छोड़ करके। बल कहीं डॉक्टर्स तो आपको यह भी कहेंगे कि आप सब फल खाइए, परंतु क्योंकि कैलोरी भी महत्वपूर्ण है इसलिए कुछ फल जैसे कि केले, चीकू, सीताफल, आम, ये इन फलों को छोड़ करके और सभी फल जो बहुत ज्यादा मीठे नहीं है, अगर अंगूर बहुत ज्यादा मीठे नहीं है तो वह हमें उसका जरूर सेवन करना चाहिए। और जो मीठे फल बताए वो इसलिए हम सेवन ना करें क्योंकि उसको बहुत कम मात्रा में खाना होगा। अगर आप आधा केला भी खाएंगे तो उससे करीब आपको 70-80 कैलोरीज मिल जाएगी, और यह संभव नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ आधा केला खाए। और साथ साथ उसमें जो शुगर है, भले अलग प्रकार की शुगर है परंतु वह भी शुगर है, इसलिए केले का और जो दूसरे फल बताए उसका आप सेवन ना करें। ऐसे ही सब्जियां भी हमें अच्छी मात्रा में खानी चाहिए। वास्तव में जितना आप रोटी, चावल, दाल आदि खाते हैं उतना ही करीब हमें कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। और सलाड्स के रूप में जब आप अलग अलग कच्ची सब्जियां खाते हैं तो उसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है और विटामिन्स भी है। और कच्ची सब्जी या तो सलाड खाने का सबसे अच्छा समय है कि भोजन से पहले लीजिए, क्योंकि भोजन से पहले जब आप सलाड लेंगे तो उससे पेट भी भर जाएगा और वो ऐसा समय है कि जब शरीर में हमारे जठर में पर्याप्त मात्रा में एसिड होता है कि जो सलाड्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। विशेष रूप से रात्रि के भोजन में सलाड्स को न लीजिए कि कईयों को गैस होने की संभावना है और उसके कारण उनको दिक्कत हो सकती है, पचन की क्रिया है वह ठीक से न हो पाए उसमें भी थोड़ी मुश्किलात आ सकती है। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे हैं, जो भी अंकुरित चीजें हैं वो अंकुरित गेहूं, मूंग, चना, मेथी, वह जरूर नाश्ते में भी थोड़ी मात्रा में ले और भोजन में भी थोड़ी मात्रा में ले। उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वह डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये अंकुरित चीजों को खाने के लिए उसे हल्का सा भी उबाल दे, क्योंकि दो प्रकार के तत्व है इन अंकुरित चीजों में। एक तो ऐसे तत्व है कि जो आहार में लोह तत्व आयन को खून में मिलने में वह रोकता है, और साथ साथ में हमारे ही शरीर में एक एंजाइम है वह ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम को यह इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, इसलिए भी पचन के क्रिया में तकलीफ हो सकती है। परंतु उसे हल्का सा उबालने से इस प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। तो अंकुरित चीजें भी हमें आहार में जरूर सेवन करनी चाहिए और अच्छी मात्रा में पानी पिए। और पानी कौन से समय पर पिए, सवेरे उठने के तुरंत बाद आप धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाइए। आज आप बिल्कुल नहीं पीते, एक ग्लास पीते तो बस 1.5 ग्लास, 2 ग्लास पानी पिए। ऐसे सवेरे सवेरे भी आप धीरे धीरे 4 ग्लास पानी भी पी सकते हैं। और खाने के कुछ समय बाद करीब 2-2.5 घंटे के बाद भी आप 1-2 ग्लास पानी पी सकते। ऐसे सारे दिन में कम से कम हमें 12-13 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए, जो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों को ऐसा आहार लेना चाहिए कि जो शरीर के वजन को बढ़ाए नहीं, या तो अगर मरीज का शरीर का भार पहले से ही अधिक है तो उसे कम करने में वह आहार मदद करे। इसलिए हम भल दिन में 6 बार खाएं, वास्तव में कहा गया है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा है कि हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा अगर भोजन लिया जाता है तो वह धीरे से ब्लड शुगर बढ़ती है और फिर से वह कम होने लगती है। अगर हम दिन में 2 बार ही खाते हैं तो एक बार ब्लड शुगर है वह बहुत बढ़ जाती है और फिर कम होने से भी वह आवश्यकता से भी ज्यादा कम हो जाती है। और जब खून में कैलोरीज नहीं होती है, हम काफी लंबे समय तक नहीं खाते हैं, तो शरीर को यह मैसेज मिलता है कि आहार नहीं मिल रहा है और इसके कारण शरीर उसकी आवश्यकता को या तो एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करता है। जैसे अगर अचानक आपकी इनकम कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जब शरीर को कई घंटों या तो एक सारा दिन भोजन नहीं मिलता है तो शरीर यह समझता है कि यह शक्ति नहीं मिल रही है, इसलिए वह उसका उपयोग कम करने लगता है और जिसके कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। परंतु फिर कुछ घंटों के बाद तो आप पूरा पेट भर के खाते हैं, तो वह जो ज्यादा शक्ति शरीर में गई वह जमा होकर के चर्बी के रूप में रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर 3-3.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा हम खाएं। और यह सचमुच संभव है कि नाश्ता जरूर करें। कोई भी व्यक्ति को कभी नाश्ता त्यागना नहीं चाहिए। विशेष रूप से माताएं बहनें ध्यान रखें कि बच्चों को जब हम स्कूल में भेजते हैं तो कई बार नाश्ता करे बिगर ही उन्हें भेज देते हैं, परंतु क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके मस्तिष्क को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता है, इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा नाश्ता जरूर करना चाहिए। और हम भोजन करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, इसे 3 बार तो हम भोजन करते ही हैं और बीच में 2 समय जिसे फ्रूट टाइम कहा गया है कि करीब 11:30 बजे और 4:30 बजे, तब अगर कुछ फल लिए जाए तो उसका सबसे अच्छा परिणाम भी होता है और शरीर को जो शक्ति की आवश्यकता है वह शक्ति भी शरीर को मिलती रहती है। तो ऐसे हमें 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और कैलोरीज को भी हम काउंट करना सीखें। बहुत कम खाने से वजन कम नहीं होता है। वास्तव में अगर हमें 2000 कैलोरीज की आवश्यकता है और हम करीब 1500 कैलोरी लेते हैं तो वह जो 500 कैलोरी हमने कम ली वह वास्तव में मदद रूप होती है। और ऐसे 500-500 कैलोरी आप कम लेते जाते हैं तो करीब 1 किलो चर्बी से 7,500 कैलोरी बनती है। तो जब आप 7,500 कैलोरी कम लेंगे तो आपका वजन 1 किलो कम होगा। 1 किलो चर्बी है वह पेट से कम होगी, शरीर के अंगों से कम होगी। तो इस प्रकार से प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी चर्बी और कैलोरीज कम ली जाए तो 1 मास में करीब 2-3 किलो वजन है वह कम हो सकता है, कि जो बहुत ही अच्छा है। और हमें कैलोरीज को काउंट करना भी सीखना चाहिए कि एक बार जब भी आप आहार ले रहे हैं, आपने नाश्ता लिया है या भोजन कर रहे हैं, कि एक बार में ही आपको जितना खाना है, 2 रोटी खानी है, चावल लेने हैं, सब्जी लेनी है, वह सब चीजें एक साथ ले ले और करीब करीब अप्रोक्सीमेटली ये समझ ले कि इसमें कितनी कैलोरीज है। तो अगर कैलोरीज का आपको पता होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में आप नहीं खाएंगे। और अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूं कि करीब 6 इंच की पतली रोटी में 80 कैलोरी होती है। ऐसे ही 1 वाटी चावल में भी 80 कैलोरी होती है। 1 वाटी दाल में, मीडियम साइज की 1 वाटी दाल में भी करीब 80 कैलोरीज है। और शुगर वाली चीजों में बहुत ज्यादा, जो तली हुई चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरी है। कि अगर आप एक बटाटा वड़ा या एक समोसा लेंगे तो उसमें 200-250 कैलोरी है। तो इसलिए ये चीजें जैसे आगे भी बताया है कि उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। और फलों में कितनी कैलोरी है, फलों में भी कैलोरी जरूर है। एक मीडियम साइज का एप्पल होगा तो उसमें भी करीब 80 कैलोरीज है। ऐसे ही एक मौसम्बी में, संतरे में भी 80 कैलोरीज है। ऐसा ही एक ग्वावा या तो अमरूद में भी करीब 80 कैलोरीज है। सिर्फ जो फल मैंने बताए हैं कि जो हमें नहीं लेने चाहिए उसमें, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा है इसके ही कारण वह न लेना अच्छा है। जब हम सलाड्स लेते हैं तो सलाड में भी कैलोरी है परंतु वह बहुत कम मात्रा में है। अगर आप करीब 1/4 किलो कोबीज लेते हैं या 1/4 किलो ककड़ी लेते हैं तो उसमें सिर्फ 50 कैलोरीज है। आलू, सूरण या तो स्वीट पोटैटो, उसमें अधिक कैलोरी है, करीब 50 ग्राम आलू लेंगे तो उसमें 50 कैलोरी है। अगर आलू खाना है तो छिलके सहित खाएं, या तो अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करीब करीब भी आपको पता चल जाए कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। नाश्ते में करीब हमें 400 कैलोरी लेनी चाहिए, दिन के भोजन में भी 350-300 कैलोरी, और रात्रि के भोजन में भी आप 250-300 कैलोरीज ले सकते हैं, और बीच में आप फल भी लेंगे तो इसे 1400-1500 कैलोरी हम लेते हैं। दूध के विषय में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी है। वास्तव में जो शाकाहारी है उनको दूध की आवश्यकता है, परंतु कईयों का यह मानना है कि जिस प्राणी का दूध है वह उसके ही बच्चे के लिए अच्छा है, जैसे मां का दूध ह्यूमन बीइंग्स के लिए अच्छा है, परंतु जो हम भैंस का दूध या गाय का दूध लेते हैं वह माना गया है कि वह अच्छा नहीं है। कुछ डायबिटोलॉजिस्ट यह भी मानते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जब उन्होंने मरीजों को कहा कि आप दूध का सेवन न करें तो उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगी, परंतु दही के रूप में हम या तो छाछ के रूप में दूध को ले सकते हैं, उसमें कई तत्व जैसे कि कैल्शियम, विटामिन B12 आदि बहुत ही अच्छे हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और आहार के विषय में और कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो शांति से खाएं, समय निकाल करके भोजन करने के लिए बैठे। कहा जाता है कि जो भोजन करने में कम समय देता है, जल्दी जल्दी भोजन करता है, उसे लेटरिन में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उसे ठीक प्रकार से दस्त नहीं होता है। इसलिए अच्छा तो यह है कि भोजन करते समय ही हम ठीक से टाइम दे और धीरे धीरे चबा करके खाए तो उसका पचन भी ठीक से होगा और कम मात्रा में आपको संतुष्टि होगी। थोड़ा थोड़ा जब हम अच्छी तरह से चबा करके खाते हैं तो तब हमें संतुष्टि भी अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार से टीवी देखते देखते कभी भी भोजन ना करें, क्योंकि टीवी देखते समय अगर हम खाते हैं तो टीवी में जो चित्र देख रहे हैं उसके भी हमारे मन पर असर होती है, उसके भी हमारे इमोशंस पर असर होती है, और वो इमोशंस पर असर होने के कारण भी या तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगेगी या भूख बिल्कुल मर जाएगी। वह भावनाओं का, इमोशंस का भी हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है। तो आहार सबसे महत्वपूर्ण है डायबिटीज के लिए, और ऐसे ही हम आहार करें कि जो वास्तव में एक दवाई का काम करे। कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं आहार के बारे में कि चाय पिए या न पिए। भले आम डॉक्टर तो आपको यह कहेंगे कि भले आप चाय पीजिए क्योंकि चाय में कोई कैलोरीज नहीं है, परंतु मैंने जो बात बताई कि हम पेनक्रियास को आराम देना चाहते हैं, साथ साथ में जो सारे अंगों में शरीर में रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स को भी हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं ताकि कम इंसुलिन काम करने लगे। इस लक्ष्य से मैं ये राय देता हूं कि चाय कॉफी न ले। और ऐसे भी चाय कॉफी स्वास्थ्य के लिए इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि जब आप चाय पीते हैं तो एक बार तो शक्ति मिल जाती है, हमें लगता है कि मेरे में बहुत शक्ति आ गई, परंतु थोड़े समय के बाद वह शक्ति कम हो जाती है, जहां से आपने शुरू की उससे भी वह शक्ति कम हो जाती है। तो क्या होता है, आप दूसरा कप चाय पीते हैं तब थोड़ी शक्ति बढ़ती है, फिर से आधे घंटे के बाद वह शक्ति और भी कम हो जाती है। ऐसे सारे दिन में देखते जाओ तो अंत में हम सचमुच शक्तिहीन हो जाते हैं। तो इसलिए चाय कॉफी की आवश्यकता नहीं है, उससे अच्छा है कि सोया कॉफी पीजिए। वह कैसे बनती है कि सोयाबीन जो मिलता है वो सोयाबीन को इस प्रकार से तवे पर आप भून दे ताकि वह काला न बन जाए परंतु लाल रहे। मिट्टी के कणों के बीच में भी उसे भुना जा सकता है ताकि वह लाल रहे, और जब वह लाल हो जाए फिर उसका पाउडर बना दे, और वह यह जो सोयाबीन का पाउडर है वो चाय की जगह पर आप एक चम्मच या इतना डाल करके वह सोया कॉफी पियेंगे तो भी उसी प्रकार की असर होती है, परंतु उसमें कैफीन नहीं है और सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन है। इसलिए भी इस सोया कॉफी की अगर धीरे धीरे आदत डाल दे तो वह बहुत ही अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स, कहीं पूछते हैं कि अलग अलग थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, यह हम ले या न ले, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज है और कोई अच्छे तत्व नहीं है। उल्टा कुछ प्रकार के एसिड्स भी है कि जो स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, उसे कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी प्यास लगी हो तो भले आप मिनरल वाटर पीजिए, परंतु ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वह सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन न करें, और डायबिटीज में तो आप पर उल्टा हुआ बुरा प्रभाव भी डालेंगे। इस प्रकार से ही और एक अच्छी चीज है कि जो वास्तव में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, परंतु डायबिटीज का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ हमें ब्लड शुगर को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना जरूरी है क्योंकि डायबिटीज में ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। दिन में एक बार या दो बार भोजन से पहले इसबगोल ले, इसबगोल जो मिलता है, तो इसबगोल जब आप भोजन से पहले लेते हैं, शुरुआत भले आप एक चम्मच से करें, एक चम्मच इसबगोल लेकर के उस पर पूरा एक ग्लास पानी पी जाए ताकि वह पेट में जाकर के फूल जाता है, और जिससे एक तो हमें संतुष्टि भी होगी और ये इसबगोल जब आप भोजन से पहले लेंगे तो वह इंजिन का काम करता है कि वह खाने को इंजिन की तरह नीचे ले जाएगा और जल्दी से वह शरीर के बाहर फेंक देगा। और जब आहार जल्दी से शरीर के बाहर जाता है तो भी आंतों पर उसकी बुरी असर नहीं होती है, और उसका एब्सॉर्प्शन भी, उसमें जो तत्व है, आपने चर्बी ली है, प्रोटीन लिया है, तो उनका खून में जो मिलना है वह भी कुछ हद तक कम हो सकता है। और इसबगोल वह कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला भी तत्व है, इसलिए शुरू में आप भले एक बार रात्रि के भोजन से पहले इसबगोल का सेवन कीजिए, और अगर वह आपको सूट होता है तो दिन के भोजन से पहले भी आप इसबगोल का सेवन कीजिए, तो वह भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में साथ साथ डायबिटीज के नियंत्रण में भी हमें बहुत मदद करता है। और डायबिटीज के विषय में लोग कई प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम करेले का जूस ले, क्या हम नीम का जूस ले, क्या हम और प्रकार की जो तत्व बताए जाते हैं जैसे कि मेथी और जामुन, वह तत्व ले। कई अनुसंधान हुए जिसमें पता चला कि यह सभी चीजें करीब 10-20% ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है, परंतु किसको? बॉम्बे हॉस्पिटल में एक अनुसंधान हुआ था जिसमें यह देखा गया कि जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने आहार को भी नियंत्रण में रखते हैं, उनको यह चीजें 10-20% मदद करती है, और जिनकी ब्लड शुगर करीब 200 के आसपास है उसको भी वह कुछ हद तक कम करने में मदद रूप करती है। तो यह भी लेना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें सजेस्ट करता हूं कि जिस पर आप प्रयोग करिए कि सवेरे उठते ही आप करेले का जूस लीजिए, करीब आधा ग्लास करेले का जूस लीजिए कि जो जैसे कहा कुछ हद तक मदद करेगा, और उसके पश्चात जब आप स्नान आदि कर लेते हैं तब 6-6:30 बजे करीब 4 बादाम और 1 अखरोट को रात भर पानी में भिगो दे, और सवेरे उठ करके उस समय पूरा का पूरा चबा ले, छिलके सहित इसको चबा ले, क्योंकि उसमें भी अच्छी चर्बी है कि जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। फिर भोजन से पहले जामुन के जो बीज है, जामुन के बीज का पाउडर बना करके करीब 1 चम्मच पाउडर है वह भोजन से पहले लीजिए, और रात्रि के भोजन से पहले मेथी को थोड़ा भून दे और फिर उसका पाउडर बना करके 1 चम्मच मेथी है वो रात्रि के भोजन से पहले लीजिए। तो इन तीनों रूप से कुछ हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में ये चीजें मदद करेगी, और नियमित रूप से इसका सेवन करके आप ब्लड शुगर को चेक भी करिए। मेरा कहने का यह भाव नहीं कि इससे ब्लड शुगर ठीक हो जाएगी, वह क्योर नहीं होगी परंतु वह कंट्रोल में जरूर रहेगी, इसलिए नियमित रूप से इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जो पहलू बताए उस पर गहराई से विचार करके हमें आहार पर नियंत्रण लाना चाहिए, तो ही हम डायबिटीज पर नियंत्रण ला सकेंगे। ओम शांति। 1960 में कैंसर के लिए एक नई दवाई पर अनुसंधान हो रहे थे जिसका नाम है क्रेबियोजिन। एक मरीज कि जिसे गले में बहुत बड़ी लिम्फोमा की गांठ थी, उसने अखबार में पढ़ा कि इस नई दवाई पर अनुसंधान हो रहे हैं। उसने अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि अगर मुझे आप यह क्रेबियोजिन के इंजेक्शन दीजिए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सिर्फ एक दिन छोड़कर उसे दो इंजेक्शन दिए गए और उसकी गांठ बर्फ की तरह पिघल गई। करीब 6 मास तक वह ठीक रहा। 6 मास के बाद एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि भल क्रेबियोजिन पर प्रयोग हो रहे हैं परंतु इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। अखबार में पढ़ते ही उसे दोबारा गांठ हो गई। जब डॉक्टर को पता चला कि अखबार में पढ़ने से उसे दोबारा कैंसर हुआ है, उन्होंने एक युक्ति सोची। पेशेंट को बुला करके कहा कि देखो भाई, पहले मैंने तुझे जो इंजेक्शन दिए थे वो शुद्ध इंजेक्शन नहीं थे, अब हमारे पास शुद्ध इंजेक्शन आने वाले हैं, अगर वह हम आपको देंगे तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे। दोबारा उसे 3 इंजेक्शन दिए गए और उसकी गांठ बिल्कुल पिघल गई। वह करीब 1 साल तक ठीक रहा। आखिरन अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी में रिपोर्ट छपे कि क्रेबियोजिन बेकार दवाई है, इससे कोई कैंसर ठीक नहीं होता है। तो उसे 3री बार कैंसर हुआ और आखिरन इस मरीज का देहांत हो गया। यह बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है जो कई किताबों में छपा है। इससे क्या पता चलता है, किसने उसे ठीक किया? मरीज की मान्यता ने ही उसे ठीक किया, उसके विचारों ने उसे ठीक किया। मन का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मन डायबिटीज को नियंत्रण में तब रखता है कि जब न केवल हमारा चिंतन हो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे खून में सही मात्रा में इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण होने से ब्लड शुगर भी कम हो रही है, नियंत्रण में आ रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही यह ब्लड शुगर है, परंतु इस बात पर हमारा निश्चय भी हो, विश्वास भी हो। पहले भी मैं इस बात में निश्चय रखता था, परंतु एक घटना हुई तब मेरा निश्चय और भी बढ़ गया, विश्वास और भी बढ़ गया। माउंट आबू में एक डायबिटीज कैंप में कुछ मरीज भी थे और साथ साथ में उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे। सवेरे जब उन्हें ध्यान का प्रयोग करा रहे थे तब इस विधि के द्वारा प्रयोग कराया कि किस प्रकार से उनकी पेनक्रियास की ग्रंथि को आराम मिल रहा है, वे स्वस्थ होते जा रहे हैं, सही मात्रा में इंसुलिन निर्माण होता है और उससे उनकी ब्लड शुगर कम होती जाती है। भले एक गलती थी, परंतु गलती से भी सीखने को मिला कि जब यह सारा प्रयोग पूरा हुआ, उसके पश्चात एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्हें तकलीफ होने लगी, उन्हें पसीना आने लगा, चक्कर सा आने लगा, तो हम इस निर्णय पर आए कि शायद उनकी ब्लड शुगर कम हो गई है। तुरंत ही उनको ग्लूकोज दिया गया और वो फिर से स्वस्थ महसूस करने लगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह प्रोफेसर को तो डायबिटीज नहीं था, वह तो बिल्कुल स्वस्थ थे, परंतु फिर भी उन्होंने यह सूचनाएं दी, विश्वासपूर्वक यह सूचनाएं दी कि मेरा ब्लड शुगर कम होता जा रहा है, और सचमुच उनका ब्लड शुगर कम हुआ जिसके कारण उन्हें तकलीफ हुई। यह गलती इसलिए है क्योंकि वास्तव में यह सूचना देनी चाहिए कि मेरी ब्लड शुगर जितनी आवश्यक होनी चाहिए उतनी ही रह रही है, कि जिससे मैं स्वस्थता से अपना कार्य कर सकूं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। साथ साथ में हमें एक चित्र भी निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसकी करीब 25% इफेक्ट शरीर पर होती है, और जो हम चित्र निर्माण करते हैं उसकी ऑलमोस्ट 75% इफेक्ट होती है। इसलिए चिंतन के साथ साथ हम चित्र भी निर्माण करें तो वह 75% सही असर है वह होगी। और इस चिंतन को, और विचारों को रिपीट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे दो मन हैं, एक है जागृत मन और दूसरा है सुषुप्त मन। सुषुप्त मन में बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। जब सुषुप्त मन जागृत हो जाता है और हम ये सूचनाएं देते हैं तो उसकी गहरी असर हो सकती है। और सुषुप्त मन में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ एक बार सजेशंस देने से गहरी असर नहीं होती, उसे अगर बार बार रिपीट किया जाए तो उसकी बहुत ही गहरी असर होती है। इसलिए दिन में कम से कम दो बार, जिस विधि का प्रयोग हम आज भी करेंगे, उसे दो बार हम अभ्यास करें और वही सूचनाएं उसी विधि से करीब दो मास तक अभ्यास करते रहे। और डायबिटीज में तो हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए ताकि सदा के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सके। सुषुप्त मन को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें शरीर को रिलैक्स कर देना चाहिए, या तो ध्यान के अभ्यास से हम मन को शांत करें, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में सुषुप्त मन जागृत होता है। और एक बार जब मन शांत हो जाता है तब फिर विशेष विधि के द्वारा हम शरीर में भी आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं। जो हम चिंतन करेंगे और चित्र निर्माण करेंगे उसे हम तीन स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहली अवस्था है यह चिंतन करें कि मस्तिष्क से आत्मा का प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है, एक एक अंगों में, सारे चेहरे में फैल रहा है, दोनों हाथों में फैल रहा है, चेस्ट में, पेट में, पैरों में, सभी अंगों में यह सुनहरा पीला प्रकाश फैलता जाता है और उन अंगों का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे मैले कपड़े धोते हैं तो किस प्रकार से सारा मैल बाहर चला जाता है और कपड़े स्वच्छ होते हैं, ऐसे ही ये चिंतन करें कि वह सुनहरे पीले प्रकाश से सारे शरीर का मैल है वह शरीर के बाहर निकल जाता है और शरीर वह स्वच्छ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। और मन जैसे जैसे शांत होता है, शुद्ध होता है, सचमुच शरीर के अंगों में भी वह शुद्धता आती जाती है। इससे जो शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं, रिसेप्टर्स जो रेजिस्टेंट हो गए हैं, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, वह प्रक्रिया ठीक होगी और थोड़ा सा इंसुलिन भी सही काम करने लगेगा। दूसरा स्टेप है कि यही आत्मा का प्रकाश विशेष रूप से पैंक्रियास की ग्रंथि पर पड़ता है। आपको बताया था कि पेट में जो गाजर जैसी ग्रंथि है और जिसकी पूंछ है वह साइड में है, इस पेंक्रियास की ग्रंथि पर भी आत्मा का प्रकाश पड़ता है और बादलों की तरह उसके सारा पेंक्रियास को वह कवर कर लेता है, कि जिससे सबसे पहले तो पेंक्रियास की ग्रंथि को आराम मिल रहा है, क्योंकि डायबिटीज में यह पेंक्रियास की ग्रंथि थक गई है, उसने काम करना बंद कर दिया है। तो जब उसे आराम मिलता है तो वो फिर से चेतनवंत होकर के फिर से उसमें शक्ति आती है और सही मात्रा में वह इंसुलिन निर्माण कर रहा है। यह सोचिए कि त्रिकोण आकार की इंसुलिन की कणिकाएं पेंक्रियास से निर्माण हो रही है और वह रस खून में मिल जाता है, और जैसे ही वह खून में मिलता है सारे शरीर में फैल जाता है, और सारे शरीर में फैल करके शरीर के सभी अंगों पर वह सही प्रकार से अपना कार्य करता है, और जिससे शुगर को शरीर के अंगों में प्रवेश करने का, शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के द्वार खुल जाते हैं और वह शुगर शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। और जब तीसरा स्टेप है कि जब खून में शुगर आवश्यक मात्रा में ही रहती है तो खून की नलिकाएं भी ठीक से कार्य करने लगती है और खून का भ्रमण सारे शरीर में अच्छी तरह से हो रहा है, और यह खून का भ्रमण विशेष प्रकार से ब्रेन में ठीक से होता है, आंखों में अच्छी तरह से खून पहुंच रहा है, हृदय को भी ठीक से खून मिल रहा है, किडनीज को और पैरों को अच्छी तरह से खून मिल रहा है। जब सभी अंगों में खून का भ्रमण ठीक हो जाता है तो अंग भी स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक प्रकार से सभी अंग कार्य कर रहे हैं। ऐसा चित्र निर्माण करें ध्यान के पश्चात। तो आइए हम ये अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर के अंगों को रिलैक्स करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि मन और शरीर का गहरा संबंध है। यह विधि कि जिसे कहा गया है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय सेल्फ सजेशन, स्वयं सूचना द्वारा शरीर को रिलैक्स करना। एक व्यापारी थे, वे जूठा दांत पहनते थे। एक दिन जब ऑफिस में बैठे थे, अचानक उन्होंने पाया कि ये जूठा दांत नहीं है। तो कोई संभावना पर विचार आने के बदले उन्हें तुरंत ही बहुत ही अशुभ विचार आया कि शायद वह दांत मेरे पेट में चला गया हो। जैसे ही उन्हें यह विचार आया वह बहुत घबरा गए, पेट में दर्द होने लगा, पसीना पसीना हो गए। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने अच्छी तरह से उनकी जांच भी की, फिर भी डॉक्टर यह नहीं बता पाए कि पेट में दांत है या नहीं। उन्होंने यही कहा कि पेट में तो दांत नहीं पता चलता है। एक्सरे भी लिया गया, फिर भी यह पता नहीं चला कि पेट में दांत तो नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आपके पेट में कहीं भी दांत नहीं है, फिर भी उनका दर्द कायम रहा। यह सभी प्रक्रिया चल ही रही थी तब अचानक उनके घर से फोन आया। तो असिस्टेंट ने बताया कि ऐसी सीरियस घटना सांप के साथ हुई है। तुरंत ही सामने से उत्तर मिला कि क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो, सांप तो दांत घर में भूल गए। जैसे ही उन्हें यह संदेश दिया गया कि साहब आप तो दांत घर में भूल गए हैं, एक सेकेंड में उनका दर्द भी गायब हो गया। यह सत्य घटना में तीन बार मन ने जो सूचना दी उसकी प्रतिक्रिया शरीर ने भी दी। सबसे पहले जब उन्हें यह विचार आया कि दांत मुंह में नहीं है तो शायद वह पेट में चला गया होगा, तुरंत दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की परंतु उसकी असर नहीं हुई, क्योंकि उन्हें यह संशय था कि शायद डॉक्टर ठीक से मेरे दांत को देख नहीं पाए हैं, उसको ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए शरीर ने वह दर्द को कायम रखा। और तीसरी बार जब यह पक्का मैसेज आया कि आप तो दांत घर में भूल गए हैं तो संशय करने की कोई बात नहीं थी, इसलिए तीसरी बार फिर से शरीर ने प्रतिक्रिया दी और दर्द खत्म हो गया। तो इसी प्रकार इस विधि में भी पैर की उंगलियों से सर तक एक एक हिस्से को हम यह सूचना देंगे कि सचमुच वह शांत हो रहा है, वह बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। और जो जो हिस्सा शरीर का रिलैक्स हो जाए हम अपनी चेतना को उससे विड्रॉ कर ले। हम यह सोचे कि वह हिस्सा है ही नहीं, जब पैर की सब मांसपेशियां रिलैक्स हो जाए यह सोचे कि पैर एक मृत देह की तरह पड़े हैं, मैं सिर्फ ऊपर के हिस्से के बारे में ही जागृत हूं। और ये रिलैक्सेशन की प्रक्रिया में जो भी अनुभव होते हैं वह अच्छे ही है, डरने की कोई बात नहीं। कुछ लोग इसलिए रिलैक्स नहीं हो पाते क्योंकि उनके मन में डर होता है कि शायद क्या होगा, यह नया अनुभव है। और जब वह डरते हैं तब वह वापस जागृत स्थिति में आ जाते हैं और रिलैक्स नहीं होते। साथ साथ हम थोड़ा सा ध्यान का भी अभ्यास करेंगे। ध्यान का अर्थ है कि एक आंतरिक यात्रा, यह एक अंतर मन की यात्रा है कि जिसमें हम अपनी सही चेतना के विषय में जागृत होते हैं कि किस प्रकार मैं एक ज्योति स्वरूप शांत आत्मा हूं। यह शरीर के सभी अंगों का संचालन करने वाली चैतन्य शक्ति है और साथ ही साथ परमात्मा जो भी आत्मा की तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनसे भी मन बुद्धि का संबंध जोड़ते हैं और सर्व शक्तियों के सागर परमात्मा से हम वह शक्तियां प्राप्त करते जाते हैं। परमात्मा शांति के सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, उनकी शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। ऐसे कुछ समय हम ध्यान का भी अभ्यास करेंगे और अंत में जो विधि मैंने बताई उस विधि के अनुसार हम डायबिटीज के नियंत्रण की जो तीन कदम हैं उन तीन कदम का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। भल राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते खुली आंखों से भी ध्यान का अभ्यास करना संभव है। तो आइए कमर को सीधी रख करके बैठे, पैरों की उंगलियों पर ध्यान दे, पैरों की उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं। पैर की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, बिल्कुल शांत हो रही है, शांति, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति के प्रकंपन पैरों के पंजों में भी फैल रहे हैं, दोनों पंजे बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर भी रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों पैर बिल्कुल शांत हल्के हो रहे हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। कमर से नीचे दोनों पैर एकदम हल्के हो गए हैं, शांत हो गए हैं, रिलैक्स। दोनों पैर डेड बॉडी की तरह पड़े हैं, सांस की प्रक्रिया पर ध्यान ले। जब आप सांस लेते हैं, सांस बाहर आता है, तब जो अनुभूति हो रही है उसी पर ध्यान दे। पेट और छाती जो हिल रहे हैं उस पर भी ध्यान दे। पेट की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंतरिक अवयव भी एकदम शांत और रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। शांति के प्रकंपन हृदय को भी मिल रहे हैं, हृदय शांत हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो रहा है, रिलैक्स, रिलैक्स। पीठ और कमर के स्नायु भी शांत हो रहे हैं, शांत, रिलैक्स। दोनों हाथ भी हल्के हो रहे हैं, हाथ की उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दे, वे एकदम हल्के और रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स, लेट गो। दोनों हाथ एकदम हल्के और रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स, लेट गो, रिलैक्स, गले से नीचे सारा शरीर शांत हो गया है, बिल्कुल हल्का हो गया है, धीरे धीरे चेहरा भी रिलैक्स और शांत होने लगा है, रिलैक्स, शांति, आंखें शीतल और शांत हो रही है, शांति, दिमाग भी हल्का, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स, दिमाग एकदम शांत और हल्का हो रहा है, रिलैक्स, पैरों की उंगलियों से सर तक सारा शरीर शांत हो गया है, और जिससे पेनक्रियास को भी आराम मिलता है और सही मात्रा में इंसुलिन निर्माण होने से खून की शुगर भी कम हो रही है। जैसे जैसे खून की शुगर कम होती है, खून का भ्रमण सही हो रहा है सभी अंगों में, सभी अंग स्वस्थ होते जा रहे हैं। इस विचार को रिपीट करें कि सचमुच खून में आवश्यक मात्रा में ही शुगर रह गई है, आप स्वस्थ होने लगे, शक्ति का संचार हो रहा है, धीरे धीरे वापस जागृत स्थिति में आते हैं, आंखें खोलते हैं, आप ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। प्रतिदिन ऐसे दिन में कम से कम 2 बार अभ्यास करने से हम सही मात्रा में इंसुलिन भी निर्माण कर सकते हैं, शरीर के अंगों में जो इंसुलिन की असर नहीं हो रही है उसे भी ठीक कर सकते हैं।